और आज का जो ये सत्र है, पैनल डिस्कशन है, आप लोग कल से आए हैं, सब देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो सब्जेक्ट है वो सद्भावना की अग्रदूत, मतलब सद्भावना फैलाने वाली नारी शक्ति, ये है सद्भावना की अग्रदूत नारी शक्ति। इस विषय पर आज पैनल डिस्कशन होना है, और पैनल डिस्कशन का मतलब ये है कि हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, है ना। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी बात करेंगे, जो सामने बैठे हैं वो भी बात करेंगे, और विषय से संबंधित ही हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि सद्भावना में महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है नारी शक्ति के रूप में। इसमें कुछ पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। राजोगिनी गीता दीदी हमारे सामने बैठी हैं, उषा दीदी अगर हमारे बीच में हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पे आके बैठें। गीता बहन जी भीनमाल वो भी हमारे बीच में बैठी हैं, आपका स्वागत है। सिंथा कारा जी एसोसिएट डायरेक्टर हैं, अगर हमारे बीच में आप आ गई हो तो आप ही हैं शायद। हाँ नमस्कार। डॉक्टर अर्चना राव योगा प्रोफेशनल हैं, मेंटर हैं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर मित्तल जी, डॉक्टर मित्तल जी अगर हमारे बीच में बैठी हैं तो वो भी मंच पे, स्वागत है आप सभी का। इस अर्चना जी आ जाएं, जा ये आपका इधर है। हम लोग प्रोग्राम शुरू करें उसके पहले हम सोच रहे हैं कि ईश्वर को याद कर लें, क्योंकि शक्ति तभी आती है जो परमात्मा से याद करते हैं, दूसरा शक्ति तो कहीं से मिलती नहीं है। और ये जो 3 मिनट का भी गीत बज रहा है ये योग का ही है, तो भगवान की भी असीम कृपा हो गई कि हम लोगों को शुरू के पहले से ऊपर से ही आदेश हो गया कि आप हमारी स्मृति से शुरू करो। तो 3 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर इसके बाद कार्यक्रम की अगली कार्यवाही शुरू होगी। मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे मंच पे अतिथि बैठे हैं उनका पुष्प और गुच्छ भेज करके स्वागत करें, और आप लोग केवल देखें नहीं, आप लोग भी फील करें कि परमात्मा की तरफ से आपका भी स्वागत है, प्रकृति ने भी आपका स्वागत किया। देखिए बहुत खूबसूरत मौसम है, नहीं तो बाहर बड़ी गर्मी कई बार रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट का माहौल है, प्लस प्रकृति दोनों का माहौल बहुत अच्छा है। और ऐसे माहौल में अगर अच्छी बातें की जाए तो निश्चित तौर पर उसका असर मन से लेकर हृदय तक जाता है। और आप लोग खाना खा रहे होंगे, आप यहाँ के परिवेश में घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमारे इस प्रभाग की जो चेयरमैन हैं चक्रधारी दीदी हैं, उनको आप लोगों ने सुना होगा, उनकी वाणी में सरस्वती विराजती हैं। सविता बहन जी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ की, उनको आपने सुना होगा। ये लोग अपने आप में एक बहुत पहुँचे हुए विद्वान लोग हैं, जो योग और राजयोग के द्वारा शक्ति का एक इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पूरे देश और समाज में इन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया इसी के लिए। तो देखिए सबका स्वागत भी हो गया, और मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। हम लोगों का 5 बजे शुरू होना था, 5:30 बजे हो रहा है, और 5 बजे शुरू होके इसका टाइम जो है लिखा नहीं कितने बजे तक है भाई, 7:30, 7:30 बजे तक है, केवल लिखा है कि 5 बजे से शुरू है। 7:30 बजे 2 घंटे 2.5 घंटे हम लोग बात करेंगे, और अभी हमारे पास एग्जैक्ट 2 घंटे हैं, और 2 घंटे में हम लोग इस सब्जेक्ट पे बहुत गहराई से बात करेंगे, उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, तमाम समस्याओं पे बात करेंगे। और अगर नारी सद्भावना की अग्रदूत है तो फिर समाज में दुर्भावना क्यों फैल रही इस पर बात करेंगे, हर परिवार में एक विडंबना क्यों फैल रही इस पर भी बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग गहराई से बात करेंगे तो हम लोगों का एक निचोड़ निकलेगा कि सचमुच नारी जिसके लिए भगवान ने उसको बनाया है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, उसकी परिकल्पना को कैसे साकार किया जाए। और ब्रह्मा कुमारीज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो खासतौर से नारी शक्ति को पूरी दुनिया भर में स्थापित किया है। यहाँ आने वाले लोग या विभिन्न धर्मों से आने वाले लोग, विभिन्न संस्कारों से आने वाले लोग, विभिन्न जातियों से आने वाले लोग जब इन बहनों के सामने जाते हैं तो उनके दृष्टि, बुद्धि और बोल तीनों बदलते हैं। अगर बोले तो भी और ना बोले तो भी, सिर्फ इनकी एक दिव्य मुस्कान, इनकी एक दृष्टि, इनके एक दर्शन से, सिर्फ इनके सफेद वस्त्रों से उनके अंदर एक नई तरह की संचार होता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके बिना बोले और अगर किसी की गलत दृष्टि अगर अच्छे में बदल जाए तो इससे बड़ा शक्ति का कोई और प्रमाण नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो चलाया जा रहा है, बहनों के बेहतरीन कुशल संचालन में चलाया जा रहा है। घर में दो चार परिवार होते हैं, यहाँ करीब 20 लाख परिवार हैं जो बहनें चलाती हैं। 20 लाख लोगों की जिंदगी बदली है, 20 लाख लोगों की सोच बदली है, 20 लाख लोगों का परिवार बदला है। तो अगर यह बदलाव आया है तो निश्चित तौर पर नारी के शक्ति के रूप में ही बदलाव आया है। तो हम लोग इस पर गहराई से बात करेंगे कि अगर ब्रह्मा कुमारी जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर दुनिया भर में इस तरह का माहौल बदल सकता है तो हम घर और परिवार और अपने बच्चे को क्यों नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा होगा। तो मैं इसी पे आगे बढ़ते हुए, हम ज्यादा बातचीत में समय आपका नहीं लूंगा, और जो वो आदरणीय शक्ति स्वरूप में लोग बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कुर्सियां आपके लिए हैं आगे, तो कृपया इनको सम्मानित कीजिए आगे वाली कुर्सियों को। ये सोच रही हूं कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, तो आप आके सामने वाली कुर्सियों पर बैठ जाएं। ये सोफा है, कुर्सियां हैं, जो वही जो आप लोग पीछे बैठे हैं, आप ही लोगों को मैं कह रहा हूं। जी इधर आ जाएं, सामने बैठ जाएं। क्या हम लोगों को भी देखने में सहज रहेगा, आपको भी लोग देखने में सहज रहेगा, और दूसरा ये वीडियो शूटिंग होती है तो उसमें भी कुर्सियां खाली नहीं आएंगी, तो उसमें भी थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। अब मैं बिना विलंब किए मैं आगे बढ़ता हूं, और सबसे पहले मैं गीता दीदी हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूं। ये हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं व्यापार उद्योग प्रभाग के, गीता दीदी हैं जो हमारे बहुत राजयोगी शिक्षिका हैं, बहुत लंबे काल से ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, और देश और दुनिया भर में तमाम तरह के लोगों से मिली हैं, तमाम तरह के लोगों से इन्होंने संवाद किया है, तमाम तरह के लोगों को इन्होंने ज्ञान सुनाया है, सिखाया है, तो काफी इनका एक तजुर्बा है योग और ध्यान और ज्ञान में, ताकि लोगों के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आए। मैं दीदी आपसे कहता हूं कि आप इसके बारे में बताइए कि अगर नारी शक्ति सद्भावना की अग्रदूत हो सकती है तो कैसे हो सकती है। महिला अगर सद्भावना की अग्रदूत, अग्रदूत का मतलब होता है मुखिया, जो उसको लीड करे, है ना, रिप्रेजेंट करे, तो नारी शक्ति सद्भावना की अग्रदूत कैसे हो सकती है? या आपने अगर नारी शक्ति के रूप में, सद्भावना के रूप में अपने काम किया है तो किस शक्ति के बदौलत किया है, अपना विचार रखें।
ओम शांति। आज सुबह आप सभी ने अपना वास्तविक परिचय प्राप्त किया, अपने स्वरूप को पहचाना कि हम केवल शरीर नहीं है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो इस आत्म स्वरूप को पहचानने के बाद जब हम स्वरूप पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो परमात्मा के ही सत्य ज्ञान से हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप उजागर करते हैं। हमारी आंतरिक शक्तियां अर्थात आत्म शक्तियों का विकास होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग देने वाला जो है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है, और इससे हमारी आंतरिक भावनाओं का विकास होता है। वैसे बहने बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही आंतरिक स्वरूप को पहचान लेने के बाद वो सर्वप्रति अपनी भावनाएं सद्भावना बनाते हैं। परमात्मा भी हमें कहते हैं कि अपना मैंपन और मेरापन नहीं लाओ, परंतु अपने अंदर शुभ भावना और शुभ कामना उजागर करो। हमारा आंतरिक ओरिजिनल स्वरूप भी ईश्वरीय गुणों का स्वरूप है। जब हम अपने ईश्वरीय गुणों को डेवलप करते हैं, उन गुणों का स्वरूप बनने लगते हैं, तो हमारे में सद्भावनाएं जागती हैं, और सद्भावनाएं जब जागती हैं, तो हम उनके सूत्रधार बन जाते हैं। इस विद्यालय में आप देखेंगे, इवन भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कि अधिकतर सत्संग महिलाएं करती हैं, अधिकतर सत्संग महिलाएं ही करती हैं, और वो ही अध्यात्म स्वरूप जब ज्ञान मार्ग में आते हैं, परमात्मा का सत्य ज्ञान मिलता है, तो हमारी पवित्र भावनाएं, शुभ भावनाएं जागती हैं, तो हम सद्भावना के सूत्रधार बनते हैं, नारी शक्ति ही उनका स्वरूप बनती है। वो घर में भी अपने पति सास ससुर की दुर्भावनाओं को सहन करती हैं, परंतु अगर वो अपनी सद्भावनाओं का प्रयोग करे, खुद भी सद्भावनाओं का स्वरूप बने, तो उन्हीं पति सास ससुर ननद इन सब का वो सह सकती हैं और योग्य जवाब दे सकती हैं। तो बहनों को हम यही कहेंगे कि आप सद्भावनाओं का सूत्रधार हैं। नारी शक्ति माना शक्ति कौन है और नारी कौन है? हम शरीर से नारी हैं और आत्मा शक्ति है, इसलिए शरीर में रहते हुए भी अपना आत्म स्वरूप रोज स्मृति में लाएं, तो ये यथार्थ स्मृति ही शक्ति बनती है। गांधी जी ने भी कहा है कि नारी शरीर को कहते हैं और आत्मा सद्भावना की सूत्रधार कही जाती है। नारी बच्चों के प्रति, पति के प्रति और जो भी रिलेटिव है सबके प्रति सद्भावनाएं उत्पन्न करती हैं, शुभ भावना उत्पन्न करती हैं, और ये शुभ भावनाएं ही घर का माहौल बदल देती है। हमारा ये अनुभव है कि यहाँ कोई हमारे घर का नहीं है, यहाँ पूरे देश भर के हर प्रांत के भाई बहने हैं, पर उनको सद्भावना से चलाने के कारण उनकी भी शुभ भावना, शुभकामना हमारे प्रति होती है। ये देना ही लेना हो जाता है। जब हम शुभ भावना देंगे, सद्भावना देंगे, तो हमें भी वो ही पुनः प्राप्त होगा, और सर्व के सद्भावनाओं के सहयोग से इस ज्ञान सरोवर का हमें अनुभव है कि यहाँ का मुश्किल कार्य एंजॉयबल बन गया और जल्दी पूरा हो गया। तो ये भी आप प्रयोग करके देखिए, अनुभव करके देखिए। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक यू दीदी। दीदी ने कहा कि परिवार का माहौल बदलते हैं, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है और ड्रम सिस्टम क्यों चालू हो रहा है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, ड्रम सिस्टम। इसके बारे में मैं जानने के लिए हमारे जो अगले वक्ता है, मैं उनसे इस पर मैं सवाल रेज कर रहा हूं आपसे कि गीता दीदी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि अगर नारी सद्भावनापूर्ण है तो पूरे परिवार को चलाती है। डेफिनेटली है कि जब माँ होती है तो माँ के रूप में जितने बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पालते पोसते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाते हैं, फिर उसके बाद घर का बंटवारा हो जाता है, और घर का बंटवारा इस कदर होता है कि एक दूसरे से लोग बात करना तो क्या खिड़की खोलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अगर नारी सद्भावना की अग्रदूत है तो फिर यह क्यों, इसका इसकी वजह क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। सिम्था कारा जी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं, साइंस यूएसए से आई हैं, आप यूएसए से हैं आप, सिम्था कारा जी आप हैं, हिंदी बोलेंगे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे ना, ओके दोनों मिला के। देखिए आपका बायोडाटा बहुत लंबा है, मैं बायोडाटा में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप एक बहुत विद्वान हैं और आपको बहुत सारा ज्ञान है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप यूएसए में रहती हैं, वहां की संस्कृति और भारत की संस्कृति में बड़ा फर्क है, और मैंने देखा है कि वहां तो परिवार और इस तरह की परिकल्पना का कोई सवाल उठता ही नहीं है, वहां तो मशीन की तरह से लोग हैं, अनाथालय ज्यादा वहां पे हैं, बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा वहां होती है, और भारत तो उसकी छवि पड़ रही है कि जैसे ही परिवार थोड़ा सा बड़ा होता है तो ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम हो जाता है, अगर माता पिता साथ में है तो कहते हैं कि ज्वाइंट हो गए, जब उनसे ही पैदा होकर के परिवार बढ़ता है, और जो परिवारों का विघटन हो रहा है, जो बंटवारा हो रहा है, जो दुरा हो रहा है, इसकी वजह क्या है, अगर नारी शक्ति सद्भावना की अग्रदूत है तो। आपके पास टॉपिक है, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, टूटी फूटी बोलूंगा तो बाहर तक जाएगी, तो आप भाव को समझिए, मुझे लगता है कि यहाँ हिंदी में ही अगर ज्यादातर बोलेंगे, आपकी हिंदी अगर टूटी फूटी होगी तो भी अच्छा लगेगा।
पहले आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द सिस्टर्स हियर एंड ब्रदर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू बाबा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज मेरा पहली बार मधुबन आई हूँ, एंड मैं रहती यूएस में और सिर्फ एक वीक के लिए आई हूँ मधुबन, ए कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, सो आप सबको देख के बहुत खुश हो रहा है। मैं रहती यूएस में अभी 20 ईयर।
आप ऐसी ही हिंदी बोलिए, बहुत सुंदर लग रहा है।
हाँ,
बस बहुत बढ़िया लग रहा है।
जैसे भाई जी बोल रहे थे, यूएस में तो छोटा छोटा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली ऐसा नहीं है, पर आजकल ये भी देख रहे कि इवन दो छोटा फैमिली है वो भी संस्कार मिलन का बहुत डिफिकल्ट होता है। उधर भी अपना कल्चर, इंडियन कल्चर अलग है, वहाँ देखते हैं बहुत फॉरेन फैमिलीज को भी, तो द मेन प्रॉब्लम इज संस्कार मिलन, पीपल आर लूजिंग द कैपेसिटी टू एडजस्ट विथ ईच अदर, और इवन दो जस्ट वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं, हर आत्मा अपना अलग संस्कार से आते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट होते हैं, एंड देन द एक्सेप्टेंस पावर कम हो गया है फैमिलीज में, पीपल में, इसलिए उधर भी देखते हैं कि थोड़ा सेपरेशन रेट ज़्यादा है, और इवन इफ यू कम टू इंडिया द जॉइंट फैमिली सिस्टम इट्स नॉट लाइक बिफोर, सो दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शक्तियाँ अंदर, एक्सेप्टेंस, चलो मेरे ही परिवार है, अलग के संस्कार है, तो वाई कांट आई एक्सेप्ट, वाई कांट आई हैव द सेम लव, यू नो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरी वन वी हैव। सो अभी ये टॉपिक हाउ गुडविल से वुमेन कैन चेंज, ये राजयोग से मैंने ये सीखा कि विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ राजयोग अपना अंदर का एक्सेप्टेंस पावर इंक्रीज होता है, और द वे टू डील पीपल विथ डिफरेंट संस्कार वो भी वी आर एबल टू एक्सेप्ट, एंड वी विल हारमोनी में जीना है, लवफुल रहना है, वो सब राजयोग से वो शक्तियाँ आते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग अवर, पहले नो हु यू आर, मैं आत्मा हूँ और वो सब भी आत्मा है, हम सब अपने अपने जर्नी पर हैं, ओ इसलिए दे आर नॉट बॉर्न टू गिव मी हैप्पीनेस और आई एम नॉट बॉर्न फॉर देम, राइट, हम सब अपने अपना आत्मा अपने अपने जर्नी पर है, तो वो शक्ति तो हर नारी के अंदर रहना है और इनफैक्ट एवरीवन के अंदर रहना है, स्पेशली एज अ वुमेन इज द इम्पॉर्टेंट, वुमेन प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैमिली, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार सबको है, तो भी पहले एक पर्सन को वो एक्सेप्टेंस एंड लव एंड यू रेडिएट दैट ब्यूटिफुल एक्सेप्टेंस एंड लविंग एनर्जी, देन डेफिनेटली वो सब बाइंडिंग के लिए इट विल हेल्प। वो मेरा अनुभव है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखा है। आपने एक कहा कि मेरा परिवार, बहुत अच्छा शब्द है। और मेरा परिवार की परिभाषा जब से बच्चा पैदा होता तब से लेके और जब तक वो शरीर छोड़ता तब तक चलता है। हमारे सामने उषा दीदी बैठी हैं, ये हमारे यहाँ भगवत गीता पे बहुत, भगवान गीता के शिव भगवान है उस पर इनका बहुत अच्छा कमांड है। गीता की बहुत बड़ी विद्वान है और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल विंग है उसकी आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। और काफी बहुत इनका, इनकी जो स्पीच है, जो इनके वक्तव्य हैं, एक तरीके से हिप्नोटिज्म की तरह से होते हैं। जादू करती नहीं है बट जब ये बोलती हैं तो लगता है कि आदमी उसमें डूब के पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। तो ऐसी हमारे सामने उषा दीदी बैठी हैं और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय से देश विदेश में तमाम अखबारों टीवी टेलीविजनों में भी आपका वक्तव्य रहा है। हमने जो इन्होंने कहा कि मेरा परिवार ये भाव, बट मैं कहता हूं कि जब एक माह से अगर बच्चे पैदा होते हैं और बचपन में जब मेरा परिवार होता है तो शादी ब्याह होने के बाद मेरा परिवार की परिभाषा बदल क्यों जाती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई जैसे हम एक परिवार में एक माँ के तीन बच्चे हुए, उस समय मेरा परिवार मतलब मैं, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरा परिवार। बट जैसे इनकी शादी होती है, उनकी शादी होती है, तो उसके बाद जब होता है तो मेरा परिवार मतलब मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, और अगर माता पिता जुड़ गए तो ज्वाइंट हो गए। तो वो परिवार की, मेरा परिवार की परिभाषा बदलने की वजह क्या है? और क्या ये मेरा परिवार में मिलावट की वजह से तो नहीं कहीं सेपरेशन है? आप इसको कैसे मानती हैं, अगर इसको रोका जाना चाहिए?
ओम शांति। हम सबके बीच में हमारी परमादरणीय चक्रधारी दीदी बैठे हैं, परमादरणीय गीता दीदी भी है, एवं आज का ये सम्मानित मंच, अनेक विद्वान बहने बैठी है सभा में भी एवं मंच पर भी। बहुत सुंदर बात आपने पूछी कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये भाव रहता है कि मेरा परिवार, और उस परिवार के लिए हम जैसे एक दूसरे के लिए बहुत कुछ त्याग भी करते हैं, शेयर भी करते हैं सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शादी होती है एक दूसरे माहौल में चले जाते हैं, और उस माहौल में जाने के बाद नेचुरल है कि वहां जाते तो उस भावना से है कि अब ये मेरा परिवार है, लेकिन वहां उसको शायद मेरा परिवार का एक सदस्य है उस रूप में स्वीकारा नहीं जाता है। और जब वो स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसे बहन ने कहा एक्सेप्टेंस, तो जहां एक्सेप्टेंस है वहां लव है, वहां मेरा परिवार है। उसने तो इस परिवार से जाकर उस परिवार में एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा परिवार है अब से, लेकिन जहां कहीं न कहीं एक अलग भाव कि भाई ये दूसरे फैमिली से आई है, ये दूसरे तरीके के संस्कार वाले हैं या दूसरे माहौल के उसमें से आई है, तो जहां उसको स्वीकारा नहीं जाता, इसने स्वीकार कर लिया, तो नेचुरल है जब ये भेदभाव जब देखना आरंभ करते हैं कि उसके साथ कई चीजें वो अपना मान के चलती है, सेक्रीफाइस करती है, एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसको रिटर्न में वो वैल्यूज नहीं मिलते हैं या उसको अलग समझा जाता है, तो अलग समझने के कारण ही जो है उसके अंदर भी फिर वो भावना पनपना शुरू होती है, और इसलिए वो कहीं न कहीं सीमित हो जाती है। जो एक विशाल भावना है वहां से धीरे धीरे कट होते होते एक सीमित भावना में आ जाती है, और सीमित भावना जब उसकी हो जाती है कि बस मैं, मेरे बच्चे और मेरा पति, यही मेरा परिवार है,
उस सीमित भावना में आने के कारण फिर देखती है कि हर एक अपने अपने सीमित भावनाओं में चले गए और उस सीमित भावनाओं के कारण लिमिट हो गई, तो लिमिटेशंस नेचुरली वहां पर आने लगती है और उस लिमिटेशंस के कारण ही फिर दूसरे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। अंदर में कहीं वो लगाव है लेकिन क्योंकि दूर हो गए हैं तो इसीलिए दुनिया में भी जैसे कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब नजरों के सामने नहीं रहे तो नेचुरल है मन से भी नहीं रहे, तो जो नजरों के सामने है वही मेरा है, ये सीमित भावना आ गई। तो जिसको मेरा माना था लेकिन धीरे धीरे वो नजरों से दूर हो गए, उनकी अंदर की भावनाएं भी बदल गई, सीमित हो गई, यही मेरा तो इनके अंदर भी यही होगा। इसलिए आज परिवार बिखरने लगा है, दूर होने लगा है, वो जॉइंट जो फीलिंग थी वो आज देखने को नहीं मिलती है, या बहुत कम ऐसा मिसाल है। आज भी भारत में हाँ एक दो फैमिलीज ऐसे हैं जो 150 लोग इकट्ठे रह रहे हैं और इकट्ठे रह करके सारे इकट्ठे, तो शायद जितना नजरों के सामने है एक दूसरे के प्रति वो भावना है, स्वीकार करने की भावना है, तो नेचुरल है कि वो मेरा परिवार वो फीलिंग आती है, नहीं तो नहीं आएंगी। इसलिए कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मन से भी वो दूर हो जाते हैं, नजरों से दूर हुए तो मन से भी दूर हो गए।
आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्द को रखा है। अब मैं चाहता हूं कि जो सभा में लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों की भी भागीदारी इसमें चाहता हूं ताकि आप लोग भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन रखें। जैसे आपने रखा कि जब आदमी नजरों से दूर होता है तो मन से भी दूर हो जाता है, पर यह भी कहा जाता है कि सात समंदर पार जब आदमी का मोहब्बत होता है तो नजरों से भले ही दूर होता है लेकिन मन से बड़ा करीब होता है, ऐसा कहते हैं। और तमाम आजकल सोशल मीडिया पे जो कनेक्शन लोगों के होते हैं, शादी विवाह हो जाते हैं या लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो नजर से दूर होते हैं लेकिन मन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मन का कनेक्शन सबसे बड़ा कनेक्शन होता है। मैं ये जानना चाहता हूं, तमाम आप लोग परिवारों से होंगे, तमाम लोग कोई इसमें ज्वाइंट फैमिली में होगा कोई नहीं भी होगा, क्या यह संभव है कि महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है सद्भावना के अग्रदूत बन के? कितना लोग इसमें सोचते हैं, कौन बताएगा इसके बारे में? सभा में हाथ उठाइए। अगर या कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें जिसके घर का बंटवारा नहीं हुआ है और जो सद्भावना के अग्रदूत बनकर के अपने परिवार को बांधे हुए है, कोई है इसमें? जी कौन सा आप मंत्र अपनाते हैं जरा बताइए, अपने बारे में बताइएगा। और ये बताइएगा कि आप परिवार में जब बर्तन एक जगह होता तो टकराहट तो होती है ना, अगर ऐसी स्थितियों में आप क्या करते हैं और कैसे परिवार को, पहले अपना परिचय बताइएगा।
ओम शांति, मेरा नाम रोमिता ग्रोवर है, मैं होशियारपुर से आई हूँ पंजाब से। मैं हमारे घर में फैमिली मतलब पूरी ज्वाइंट फैमिली है जिसमें मेरे सास ससुर हैं और तीन मतलब भाई हैं, हम सबसे बड़ी मैं जेठानी, बाकी मेरी दो देवरानियां, और ननंद की शादी भी अभी 4 साल पहले ही हुई है। तो हम मतलब पूरा एक परिवार एक ही घर में रहते हैं। पहले शुरू में मेरे साथ मतलब जब मैं मतलब बस ये है कि किचन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है बट साझा है, अभी सब कुछ साझा है।
मतलब किचन ऐसा, किचन क्यों बंटवारा कर दिया आपने? खाना दोनों का क्या अलग है?
ज्यादा लोग बढ़ गए, सबका टेस्ट अलग था, सिर्फ इसलिए, बाकी कुछ भी बटा नहीं है। मतलब लेकिन मैं मतलब जब मैं अलग हुई थी ना तब भी मेरे मन में उनके लिए प्यार था, तब मैं ज्ञान में नहीं थी, लेकिन जब मैं ज्ञान में चली, जैसे आप पहले बता रहे थे जो थोड़ा दिल से दूर हुए, थोड़ा मतलब जो नजर से मतलब दिल से, वो बात भी हुई मेरी लाइफ में, लेकिन उसके बाद फिर भी हमारा परिवार इकट्ठा। और मैं अपना मतलब परिवार के लिए ना हमेशा सबको देखती हूँ, अपने सास ससुर को भी, देवर देवरानी को भी, मैं सबके लिए शुभ भावना रखती हूँ कि ये ना हमेशा खुश रहें, मतलब हमेशा स्वस्थ रहें। बेशक भाइयों में आपस में थोड़ी तकरार होती है लेकिन मेरी देवरानियों के साथ 1% भी कभी तकरार नहीं हुई,
तो
और वो वो खुद वो कहती हैं कि आप पहले भी अच्छे थे, जब से आप ज्ञान में चले हो तब से तो मतलब आपसे प्यार वाली वाइब्रेशन और ज्यादा आती है। मतलब बस मैं उनको देख के यही सोचती हूँ, ये सभी आत्माएं मेरी भाई बहन है, कोई ना कोई मतलब कर्म मतलब हमारा था जो हम मतलब एक ही परिवार में हम इकट्ठे हुए हैं, मतलब ये आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करने आई हैं और मेरे साथ, और मैंने इनके साथ सबसे बहुत प्यार से हिसाब किताब चुकतू करना है और बहुत सारी शुभ भावना देनी है इन सबको
जी। और इसमें कोई बताया कि परिवार के टूटने की वजह क्या है, अगर नारी सद्भावना की अगर दूत है तो? हाँ बताइए, आ जाइए, आपका आपका हाथ देख रहा हूँ, आ जाइए, आप ही ने जो उठाया। हाँ आ गया जी, देखिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इन्होंने जो बोला है इसी पे एक सवाल है। मैं आगे हमारे जो अलग पैनलिस्ट हैं उनसे मैं बात करूंगा इस मामले पे। आप परिवार टूटने पे बोलेंगी या परिवार बसाने पे बोलेंगी?
बसाने पर।
हाँ बसाने पे बताइए।
ओम शांति।
हाँ
मैं ग्वालियर से हूँ, डॉक्टर मुक्ता सिकरवार, और मैं अपनी बात दो पंक्तियों से कहना चाहूंगी। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि घर में रहकर भी नहीं है संवाद दोनों के बीच, घर में रहकर भी नहीं है संवाद दोनों के बीच, मौन पसरा है कई हफ्तों से संबंधों के बीच।
वाह वाह।
तो ये जो टूटन है संबंधों में, जो आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की जो भावना है जो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है रिश्तों में, एक दूसरे को शक की नजर से देखना, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको दिल से लगा लेना। पहले ऐसा होता था, मैं पूरे संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरी ताई जी, उनकी चार बेटियां, मेरे बाबा, 12 लोगों का हमारा परिवार था, लेकिन हम एक साथ रहते थे, एकजुट रहते थे। कभी भी ऐसी छोटी मोटी बातें होती थी तो जो मैं ये देखती थी कि हेड ऑफ द जो फैमिली होता है, जो मेरे पापा थे, वो कुछ भी मम्मी और ताई जी के बीच में होता था, वो कुछ भी कहती थी, वो किसी पे ध्यान नहीं देते थे, ना वो उनका समर्थन करते थे ना वो उनको मना करते थे, वो सिर्फ एक बात कहते थे, तुम लोगों को एक साथ रहना है बस, तो तुम लोग कैसे एडजस्ट करती हो आपस में।
अरे भाई आप ये बताइए कि
जी
आपने पुआल का ढेर लगा दिया, उसमें आग सुलग रही है और बाहर से कहते रहिए कि नहीं आपको एक ही रहना, अंदर तो जल ही रहा है ना?
नहीं नहीं अंदर हाँ। तो देखिए, तो कहा जाता है कि जो बर्तन है वो साथ में रहते हैं तो खटकते ही हैं। एक अलग अलग फैमिली के लोग आते हैं, मैं अलग परिवार से हूँ, मेरी देवरानी अलग परिवार से, उसकी परवरिश अलग तरह से हुई है, मेरी अलग तरह से हुई है, नेचुरल हमारी सोच अलग अलग है, लेकिन उस सोच को एक साथ में लेके आना, मुझे ऐसा लगता है कि जो घर का मुखिया होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। चाहे वो मेरे मतलब ससुर थे पहले, लेकिन अब ससुर की डेथ हो गई तो मेरी मदर इन लॉ है, उनके हाथ में है और वो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बांध के रखे हुए हैं। वो सबकी शिकायतें सुनती हैं, ऐसा नहीं है, शिकायत सबको होती है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे सर पर उनका हाथ है, कोई ऐसा है जिससे हम जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
यहाँ तो लोग सर से हाथ ही उठा के फेंक देते हैं, क्या करेंगे आप?
नहीं अब देखिए, पूरे समाज का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो आपका जो प्रश्न था मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि कोई महिला ऐसा कर सकती है सद्भावना के साथ, तो मैं कह रही हूँ कि 100% कर सकती है,
ठीक है,
अगर उसे घर का सहयोग मिले तो।
अच्छा, अगर मान लीजिए सहयोग नहीं मिले तो?
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सहयोग तो मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सहयोग घर के लोगों का मिलना चाहिए और उनको सबको प्रेरित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि
सीता जी तो अकेली ही थी ना?
नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीता जी अकेली थी।
चलिए थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैं अब दूसरी गीता बहन जी से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने भी एक बात कही कि जो ज्वाइंट फैमिली है, उन्होंने दो तीन बातें बहुत सार तरीके से कह दी। अगर उनकी परिवार ज्वाइंट फैमिली है तो उसकी धुरी अगर वो हैं तो उन किन विशेषताओं के कारण है जो उन्होंने भी बताया है उस पर बताइए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर परिवार को ज्वाइंट रखना है तो सहयोग मिले तो नारी कर सकती है। क्या अगर किसी को क्रांति का आगाज करना है तो बिना किसी के सहयोग के भी हो सकता है या नहीं, वो दोनों भी बताइए। गीता बहन जी हमारी यूथ विंग की बड़ी एक्टिव सदस्य हैं और यहाँ भीमाल ब्रांच है ब्रह्मा कुमारीज की, वहाँ पे हैं, बड़ी तेज तर्रार बोलती हैं और हर क्षेत्र में मारवाड़ी से लेकर जैनी से लेकर सबको ज्ञान सुनाती हैं और मुझे लगता है कि आज भी आपको वो मंत्र बताएंगे। जी गीता बहन जी बताएं।
ओम शांति। पिछले चार एक साल से हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, घर बने मंदिर। उसके एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो परसेप्शन की बात थी कि हम अपनी तरफ से क्या परसेप्शन रखते हैं। तो जो हम अनुभव करते आए हैं कि जब एक बहू ससुराल में एक महिला आती है, युवती आती है, तो उसके मन में एक विजन, एक पिक्चर का एक फ्रेम बना हुआ होता है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ ऐसा ऐसा मेरा घर होगा, ऐसी ऐसी मेरी सास होगी, इस तरह का होगा, एक फ्रेम बना के वो आती है। अच्छा, जब वो आती है तो वहां पिक्चर कुछ और टाइप का होता है। अब वो अपनी फ्रेम में उस पिक्चर को कैसे भी फिट करने की कोशिश करती रहती है। प्रॉब्लम तब तक नहीं होती है, प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वहां जो ऑलरेडी सास है उसने भी एक फ्रेम बना के रखी होती है कि मेरे घर में जब बहू आएगी तो वो ऐसी ऐसी होगी, वो मेरा कहना मानेगी, ये वो आदि जो भी। अब वो फिर बहू को, बहू रूपी पोस्टर को अपनी वाली फ्रेम में फिट करने की कोशिश में लगी रहती है। अब दोनों जब तक अपनी अपनी फ्रेम में एक दूसरे को फिट करने की कोशिश करेंगे तब तक समस्याएं रहती है। लेकिन अगर हम ये समझना शुरू करें तो हरेक जो एक माँ को छोड़कर एक जब लेडी आती है, एक दूसरा परिवार को जब वो एडॉप्ट करती है, तो कि वो ये सोचती है कि जब मेरे पति को मैंने अपना माना है तो पति की माँ को भी मैं अपनी माँ मानूं, वो भी मेरी माँ हो गई। या इसी तरह से जब एक सास भी है, जब उसके घर में बहू आती है, तो क्यों नहीं वो भी इसी तरह से अपनी फ्रेम को छोड़कर जो पोस्टर है उस अनुसार नया फ्रेम बनाए। मेरी फ्रेम में जब तक मैं दूसरे को फिट करना चाहती हूँ तब तक समस्याएं आती है। वरना मैं जहां तक समझती हूँ ये टॉपिक महिलाओं के लिए इसीलिए है कि जिसको समस्या माना जाता है ना उसी को समाधान आज दिया गया है। तो अच्छी बात है कि समस्या वाला स्वयं ही समाधान ढूंढ लेगा और तब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
यहाँ तो अब पूरा तिजोरी की चाबी ही उनके पास है जो तिजोरी लेके भाग जाते हैं।
ऐसा है कि सेल्फिश जो मोटिव है वो जहां भी एक्टिव हुआ, चाहे किसी बिजनेस में, चाहे किसी दोस्ती में, चाहे किसी संगठन में, चाहे किसी धार्मिक कार्य में, जहां भी स्वार्थ हावी हुआ है वहां वो चीज टूटी है। और इसीलिए परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, विश्व अपना है, आप कुछ समय के लिए आए हैं, जर्नी बहुत लंबी है, तो छोटा सा पड़ाव है और इतने से पड़ाव में आपको केवल अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जैसे सम्मेलन इतना बड़ा है, मैं एक सेशन में हूं तो मुझे ये रहता है कि मेरे सेशन में मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, पूरे सम्मेलन को ठीक करने की जवाबदारी मैं नहीं लेती हूँ। इसी तरह से हरेक अपने रोल में बिना स्वार्थ के अगर कुछ बेटर करने के लिए कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि वो सहयोग देगा। और जो मैडम ने कहा कि सहयोग मिले, देखिए ये संसार ऐसा है कि जो देंगे वो मिलेगा, मिलेगा तो देंगे, ये तो कभी नहीं होता है। धरती में भी पहले बीज डालना पड़ता है तभी कुछ उगता है, इसलिए पहले देंगे तो मिलेगा, ये पक्का है।
थैंक यू। मैंने कहा कि जो आपने वो एक चीज कहा था ज्वाइंट फैमिली में, इन्होंने कहा था कि इनकी जो देवरानी की बात कर रहे थे आप ना, हाँ, इनकी देवरानी है, कहती है कि आप पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हो। ये जो अच्छा वर्ड है, ये जो अच्छा शब्द है, अगर आदमी दुश्मन को भी बोले कि तुम बहुत अच्छे हो ना, तो उसकी कटुता कुछ समय के लिए कम हो जाएगी आपके लिए। अब ये बताइए, मैं अगले हमारे पैनल में जो बैठे हैं, क्या तुम अच्छे हो, महिला जो है सद्भावना की अग्रदूत है, उस अग्रदूत की जो शक्ति है उसमें अच्छे शब्द का कितना इस्तेमाल हो जिससे वो सद्भावना का ग्राफ उसका बढ़ जाए और परिवार को जोड़ दे। क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा कहा जाता है, सॉरी मैं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट मैं आज चूंकि आप लोगों के बीच में एक ही भाई हूं तो मैं बोल रहा हूं, मेरे से गलती सही हो तो माफ कर देना आप लोग, कि ऐसा कहा जाता है कि इच्छा द्वेष बहुत होता है बहनों माताओं में, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, लोग बोलते हैं ये। तो इसमें क्या अच्छे शब्द से इच्छा द्वेष के ग्राफ को कम किया जा सकता है या नहीं? हमारे बीच में हमारी अगली जो वक्ता हैं, मैं इनसे पूछता हूं, आप मित्तल जी हैं, अर्चना जी आप तो योगा प्रोफेशनल हैं, मेंटर भी हैं, योग से खुद तो बदलते हैं, पूरी दुनिया भी बदलती है, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सिद्ध कर दिया है। अब बताइए कि जो ये इस देश का जो श्राप लगा है खास करके नारी शक्ति पे, जो संपूर्ण चंद्रमा में एक काला सा दाग दिखाता है, कहते हैं नारी शक्ति और फिर कहते हैं कि इस देश का श्राप, तो क्या इस अच्छे शब्द से इसको धोया जा सकता है? अगर धोया जा सकता है तो इसमें क्या क्या ट्रबल हो सकती है जो पारिवारिक चीजों में सामान्य तौर पे आती है? अब बताएं।
गुड इवनिंग ऑल वंडरफुल सोल्स प्रेजेंट हियर, एंड आप सभी का, मैं जो भी मंचासीन है उस सबको मैं प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे एक मतलब एक जागरूक आप जो डिस्कशन चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसा सभी दीदी एक एक करके बता चुके हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है भारत, यहाँ हम तो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से भाई जी बोल रहे हैं अच्छा शब्द योग के लिए है ना, तो हम लोगों ने जब भी सुना है योग है ना, योग मतलब साधारण भाषा में जुड़ना है ना, कनेक्टिंग आर सोल टू सुप्रीम सोल है ना। अभी जब राजयोग की बात करते हैं जहां हमने ये चीजें सुनी है, आप लोग के सेंटर से ही सुना है कि अफर्मेशन से है ना, जितना कोई जैसा भी है लेकिन आप उसको जैसा देखना चाहते हैं वैसा अफर्म करते जाते हैं, ये सब कुछ ध्यान में ही संभव है। जब हमारे सेंसरी ऑर्गन सब कुछ ओपन है ना, हम बोल रहे थे दीदी की एक्सेप्टेंस जो लेवल है वो कम हो गया है, पेशेंस लेवल कम हो गया है, तो आत्मशक्ति को या सोल के पार को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसमें जो बहुत ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो राजयोग सेंटर्स, चाहे आप पॉलिटिशियंस को ले आए चाहे फैमिली मेंबर्स को ले आए, जो इम्प्रूवमेंट होगा वो योग से ही होगा। अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लगी है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं तो हम सब कुछ उस चीज को आप जैसा देखना चाहते हैं, जैसा दीदी ने भी बताया कि आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें उस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अच्छा है कि नहीं, आप उसको अच्छा देखना चाहते हैं, आप उसी की क्वालिटीज को भी देख रहे हो, आप ये सब चीजें एक्सेप्ट भी कर रहे हो, इमेजिन भी कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशन अफर्मेशन इतना चल चुका है सब कुछ, सामने बोलना नहीं महसूस करना, ध्यान में वैसा देखना वैसा ही सोचना, जैसे आजकल का कल्चर चला है हर एक से ना कि मीटिंग किया है और बोला है बस प्यारा प्यारा है ना, और दिल में चल रहा है कुछ और। दीदी बोल रहे थे अभी, भाई जी बोल रहे थे कि सात समंदर कुछ ऐसा, तो हम लोग डिस्टेंस रिलेशंस में भी देखते हैं कि चाहे यूएस में बैठा फैमिली है बट इनकी बॉन्डिंग इंडिया में होगी ना, इनकी जो भी फैमिली बॉन्डिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे वो टेलीपैथी वर्क करती है, चाहे वो इनके जो शुभ भावना है ना, जो अच्छी इंटेंशंस हैं एक दूसरे के लिए, जो वाइब्रेशंस हैं, वो तो कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता हमारे सामने है या नहीं। ये तो चलो हम एक फैमिली में रहते हैं, एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, एक्सचेंज करके रिएक्ट कर जाते हैं, तो सोल पावर इंक्रीज करने का तो भाई जी एक ही है कि राजयोग में तो या योग आपको करना ही है, सुबह नहीं तो शाम, जब भी आपको एक वक्त मिले, किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए, पहले हम अपने आप को है ना, हम अपने आप को जब सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं ना हमें सब अच्छे लगने लग जाते हैं, अपने आप को तो वक्त दे नहीं रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बता रही हूँ लेडीज, जो स्पेशली घर में है ना, फैमिली में सबकी आपकी एनर्जी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आपके इन लॉज हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ, एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ कि मैं आधा घंटा बैठूंगी सिर्फ खुद के लिए। और ये ना फैमिली में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या योग ध्यान में लगा लिया है ना, हमारी विचारधारा है बहुत, जो कि बहुत हेल्दी है, जो कि मैं बोल रही हूँ कि विश्व अपना रहा है, अब आजकल इंटरनेशनल डे जब सेलिब्रेट होने लग रहा है, लेकिन हम अपने रूट से थोड़ा थोड़ा कम उन चीजों में जाते जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा जरूरत है हम भी इन चीजों को एक्सेप्ट करें, हम भी सुबह या जिसके भी आसपास जो भी सेंटर है जहां भी आप लोग जा सके, वो नहीं बोलते कि घर में ना करो, घर में भी आप जब भी आपको वक्त मिलता है अपने लिए वो जरूर निकालें, उस अच्छा नहीं पहले अपने लिए अच्छा जो कर सकते हैं, फिर बाकी लोगों के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सभी कुछ जो भी सुधार होगा ना, वो जो बोल रहे थे कि आत्म रूप में जब हम देख लेते हैं अपने आप को है ना, कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, सब दीदी ने बता दिया कि जेंडर भी नहीं है सोल का, तो मतलब इतने कम वक्त में क्या क्या चीजें हम बता दें, सब कुछ सोल्यूशंस आपके पास है। आप लोग जब सब बैठेंगे और जब हम देखेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, दीदी बता रहे हैं सोल ऑन जर्नी है, तो फॉरगिवनेस भी आ जाएगी। वहां सब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं ना, एक एक क्वालिटी जो सोल की है, तो स्ट्रेंथन तो हमें ही होना है, और उसका जो मार्ग है वो यहाँ पे, आप यहाँ पे या कहीं भी, शायद वहां यूएस यूके या हर कंट्री में सेंटर्स होंगे अपने ना, कहीं भी आप जहां भी हैं, आप उस चीज को मुझे लगता है प्रमोट करना चाहिए अपने कल्चर को भी, और योग भी करें, और ये सुप्रा सेंसरी चीजों से जाकर जो अपना हेल्थ है ना, फिजिकल चाहे मेंटल साइकोलॉजिकल कुछ भी है, ये स्पिरिचुअल हेल्थ को भी हम तभी स्ट्रांग कर सकते हैं। रिलेशनशिप तो साइड इफेक्ट है, अपने आप साउंड हो जाएंगे, ये तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन सब कह चुके हैं यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, मुझे लगता है योग से सब संभव है। धन्यवाद।
देखिए ये तो योगा टीचर हैं, तो योग से ही रोग ठीक करेंगे, क्योंकि सामान्य तौर से चाहे मन का रोग हो चाहे शरीर का रोग हो, योग पे ही बात करेंगी। और जब योग करते हैं तो उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है और आत्मा के संबंध दोनों रोग भागते हैं। थैंक यू आपका, आपने इस पर विचार रखा। मैं कहता हूं कि मैं जो हमारे अगले पैनल से मैं बात करूंगा इसमें, मान लीजिए कोई देवरानी है और कोई जेठानी है, देवरानी अच्छा अच्छा बोल रही है, पीछे से आपका हिस्सा ले ले, आपसे ज्यादा इकट्ठा कर ले, आधा कम बताए, और आपको बाद में मालूम पड़ गया कि सामने तो अच्छा बोल रही है पीछे ऐसा कर रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे, कौन बताएगा? किसके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा मैं समझता हूं, किसी के साथ हुआ है? हाथ खड़ा करो। हाँ आपके साथ हुआ है, अरे आपका तो अच्छा ही है ना जरा, आपके साथ कहां से हो गया? अच्छा अच्छा बाबा में नहीं होते तो क्या करते हैं, माना वो आपको सामने से अच्छा बोल के पीछे से आपका काटते रहे तो भी कर रही है। कहीं लाइव सुन रही होगी तो बोलेगी कि बताओ हमारी शिकायत कर रही है कि पीछे से कर रही है, आप समझा लेंगे उनको। इसमें किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि तमाम कोई ना कोई देवरानी होगा, कोई ना कोई जेठानी होगा, कोई सास होगी, कोई मतलब ननद, हाँ जरा आ जाइए सामने आ जाइए। हाँ हाँ आगे।
हाँ जी ओम शांति।
हाँ
हाँ जी मेरे साथ हुआ है।
अच्छा क्या हो गया आपके साथ?
मेरे जहाँ मेरी मैरिज हुई वो 8 ब्रदर हैं, 7वां नंबर मेरा है, और मैं कॉलेज में असिस्टेंट मेंटर की पोस्ट पे हूँ, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो हम थोड़े टाइम बाद उनके यहाँ जाते थे, जो खुद का इनका मकान था उस पे सारे का सारा इन्होंने पैसा लगाया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में थे मेरी मैरिज से पहले। तो एक बार हम काफी समय नहीं जा पाए, तो जब हम गए तो वहां बंटवारा हो चुका था, दीवारें हो चुकी थी, सब कुछ था, और एकदम बहुत हमें झटका लगा। तो मैंने इनसे कहा कि हमने सोचा भी था कि अगर देंगे भी तो भी नहीं लेंगे हम, लेकिन हमसे पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं, तो एक बार इनसे पूछना है। तो पहले तो वो माने नहीं, फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ हमारा हिस्सा कहाँ है, मैंने तो सारी कमाई यहीं पर लगा दी। तो उन्होंने बोला कि जो 30 साल तेरे को रोटी दी है ना वो उसी में चला गया। तो ये चुप कर गए। फिर मैंने बोला कि 30 साल इन्होंने अकेले ने तो खाना नहीं खाया, जो 7 ब्रदर हैं उन्होंने भी तो खाया होगा, फिर हमें क्यों छोड़ा गया? तो वो यही बोले कि आप कमाते हो आप बना लोगे। तो मैंने बहुत झेला, मतलब अगर मैं बताती हूँ तो मेरी कहानी सुनकर लोग रो पड़ते हैं, तो मैं शायद इसीलिए मुझे यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाते हैं, क्योंकि जो मैं बताती हूँ वो मैंने अपने खुद पर झेला है, और इतना झेला है, इतना झेला है। एक टाइम ऐसा भी था कि दुआ करती थी कि मर जाऊं, कभी जॉब पे जाती थी तो सोच के जाती थी हे भोले शंकर वापस मत आऊं, कहीं कट जाऊं, कहीं मर जाऊं। लेकिन एक समय फिर ऐसा भी आया कि मैंने जीना भी शुरू किया, लोगों को भी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया कि यही सब कुछ है, क्योंकि मेरे उन्होंने एक वादा लिया था कि मेरी माँ के सामने कभी कुछ बोलना नहीं, और जब वो इतना मेरे को टॉर्चर करते थे तो मैं एक बात ऊपर को हाथ करके कहती थी कि मेरा परमात्मा है तो तू देख रहा
है। टॉर्चर क्या करते थे, मतलब डंडा मारते थे या गाली गलौज करते थे?
नहीं सर, ऐसे होता था जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं 5:20 पर घर से निकलती थी, शाम को 5:20 पर आती थी, तो वो कहते थे कि सुबह 3 बजे उठ के तुमने खाना पका कर जाना है और वापसी पे आके सब कुछ करना है, और 1% भी मेरे को कोऑपरेशन नहीं थी। बच्चा हुआ तो बच्चे को 100 किलोमीटर था मेरा स्कूल, वहां लेके जाना है, साथ में वहां मैंने संभालने के लिए रखा था, जब घर में वो नहीं रख सकते बच्चे को भी, तो एक्सेस थी। और फिर उस एक्सेस का परमात्मा ने मतलब वो उनको दिया कि उनके इन सबसे छोटे भाई थे वो मेरे पास आकर बोले थे कि खुदा से कहो कि इसकी जान निकाले, बहुत ज्यादा तंग, अंत में वो 2 साल बहुत तंग रहे। मैंने चाहा नहीं था लेकिन उस परमात्मा ने मुझे जितना जितना मैं ऊपर उठती गई, जितना जितना वो टॉर्चर करते गए, मैंने MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, CET, BEd, PhD कर रही हूँ, तो जितना वो मेरे को धकेलते थे कि जॉब,
तो आप जवाब नहीं देते थे क्या? अगर मान लीजिए टॉर्चर करते तो आप करते क्या थे, चुप रहते थे या उनको समझाते थे?
मैं इतना रो चुकी हूँ, मेरे यहाँ पे
मना रोने के अपने
कुछ मेरे प्लेटें जो है ना वो सिर पे लगा लगा के तोड़ी हुई है उन्होंने, मेरे यहाँ पे निशान भी।
मेरा कहना यह है कि आपने चुपचाप उसको सहन किया या रो रो के उसको काटा?
पहले सहन किया लेकिन एक टाइम आया, फिर मैंने अपने तरीके से उनको बताया कि सहन करने के बाद आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो इस वजह से हूँ कि मैंने तब सबर किया और उस परमात्मा ने मेरे सबर का मुझे सिला।
ओके थैंक यू।
ओके जी
थैंक यू। और कोई है क्या इसमें? हाँ
ओम शांति।
आपके साथ भी हुआ है?
मेरे साथ ऐसे हुआ,
आपकी उम्र तो बहुत हो गई है।
मेरी शादी हुई थी,
हाँ
3 साल हुए थे, तो 2 भाई थे और मेरा एक बेटा पहले था 1.5 साल का, और हस्बैंड की डेथ होने के बाद बेटा बाद में पैदा हुआ। उसके बाद मेरे को वहां से कुछ भी मिला नहीं, क्या एक दुपट्टा भी नहीं मिला, मैंने अपनी मेहनत बिल्कुल भी हारी नहीं, मैंने भगवान का इतना नाम लिया। मैं थोड़ा सा पढ़ी थी, बाद में पढ़ाई की, फिर मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग की, उसके बाद मैं अपने बच्चे अपनी मम्मी के पास छोड़े, जो कि मेरे को आज तक उन्होंने कभी पूछा नहीं, और मुझे आज तक ये नहीं पता मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है। मैं डिलीवरी करने अमृतसर पंजाब में आई, वो जलंधर रहते थे, मुझे ये नहीं पता उनको आज तक क्या हुआ, और जैसे ही उनका पता चला डेथ हुई है, और वो उसके बाद सेम डे मेरा मेल बेबी हुआ। उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, और मैंने हरियाणा में जाके पंजाब से ट्रेनिंग की, नर्सिंग ट्रेनिंग, उसके बाद मेरे को जॉब मिली, आज मैं बिल्कुल वेल सेटल हूँ। एक मेरा बेटा कनाडा रहता है, दूसरा बेटा मेरी मम्मी ने गोद लिया था, वो मम्मी की डेथ होने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो भाई जो बना हुआ कोर्ट के थ्रू उन्होंने लिया, एक बेटा मेरे पास था, एक भाई बन गया, वो भी वेल सेटल है, वो भी वेल सेटल है, आज मैं बिल्कुल वेरी हैप्पी,
खुश है ना?
खुश हूँ, और मैंने मेहनत बहुत की है कि ससुराल से कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी मैं बहुत हैप्पी हूँ।
ठीक है, थैंक यू। आपको तो बाबा ने ही दे दिया ना। मैं इन लोगों से देखिए, कहानी घर घर की है और सास भी कभी बहू थी। उन्होंने कहा कि जो पहले आए थे कि मैं बहुत सहन की हूं, मैं बहुत रोई, मतलब जैसे भी करके उन्होंने कहा, बट यहां पे बात हो रही है कि नारी शक्ति है और सद्भावना की अग्रदूत है। तो इसके संदर्भ में एक कहावत है कि कह रही मैं उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति उत्तम संस्कारों वाला होगा उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के पेड़ पे जहरीले सांप लपटे रहते हैं और उनके जहर का कोई असर नहीं होता है। तो अगर नारी सद्भावना की अगर दूत है, नारी अगर शक्ति है, तो क्या इन चीजों का असर इस तरीके से पड़ना चाहिए कि हम रो के या सहन करके बिताएं, या अपने समान में रह करके कि मैं तो सद्भावना की स्वरूप हूं, मैं तो नारी शक्ति हूं, और जहां पे शक्ति होती है वहां पे कमजोरी नहीं होती है। इस मामले में मैं समझता हूं कि आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो हमारी अगली स्पीकर हैं मित्तल जी, मित्तल जी, आप मीडिया प्रोफेशनल हैं और आप अथर भी हैं, आप गांधीनगर से आई हैं, आप लिखती भी हैं। नारी सद्भावना की अगर दूत है, नारी शक्ति है, कहीं नारी को अबला सबला नहीं कहा गया, हर जगह नारी को शक्ति के रूप में कहा। अगर नारी शक्ति है तो जो घर परिवार में घटनाएं होती हैं, जैसा सब लोगों ने कहा, उसको देखने का नजरिया और उसको उसके साथ चलने का नजरिया क्या होना चाहिए जो हावी न होने दे, बताइए।
ऑफ कोर्स उसको देखने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। जो यहाँ दो बहनें अभी अपनी कहानी बता के गई कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, और दूसरी बहन ने बोला कि मुझे जितना परेशान किया गया आज मैं स्वस्थ हूँ, उनको उनका जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में जब ये टॉपिक आता है कि नजरिया क्या होना चाहिए, तो मैं ये मानती हूँ कि ये दोनों आत्माएं यहाँ पहले आई कि नहीं, कब से यहाँ जुड़ी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर स्पिरिचुअली एलिवेटेड रही होंगी या कहीं उनके संस्कार या पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ रहे होंगे कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ नहीं चाहिए, खुद मेहनत करो और जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलके ही रहेगा। जैसे मेरे माता पिता मुझे हमेशा कहते हैं कि चिंता मत करो, जो यहां है ना यहां से कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो अप्रोच है, ये जो नजरिया है, बिल्कुल ये वही होना चाहिए और यही स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस का एक गोल है कि हम सब सिचुएशंस से, संसार की परिस्थितियों से डिप्रेस ना हो, हार ना मान जाए। रही बात रोने धोने की, तो हम इंसान है, फॉर अ मोमेंट किसी को भी रोना आ सकता है, हर्ट हो सकता है, टाइम बीइंग डिप्रेस हो सकता है, लेकिन उभरना है। बात यह है कि हमें इससे उभरना है, हमें मार्ग निकालना है, हमें रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता तभी हो सकता है जब हम पॉजिटिवली अंदर से प्रदीप्त है, हमारी आत्मा उन्नत है, हमारे संस्कार हमारे साथ हैं जो हमें एक मजबूत शिक्षा देते हैं और परिस्थितियों से उभर कर बाहर आने की सोच देते हैं। तो यही नजरिया होना चाहिए।
थैंक यू। और किसी का सवाल है कैसा? हाँ आइए।
ओम शांति। हाँ जी, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई संसार से कोई शिकायत नहीं, ना रिश्तेदारों से कोई शिकायत है।
तो शिकायत किससे है?
शिकायत सिर्फ परमात्मा से करते हैं हम, बस, और किसी से नहीं करते।
ये सबसे अच्छा है कि बाकी से शिकायत नहीं कर लो, उससे शिकायत
नहीं, नहीं, संसार से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कल भी दीदी सत्संग यही कर रहे थे कि सब ये कर्मा है अपना जो भी है, तो यहाँ हम एक रोल करने के लिए आए और ये हमने देखना कि हमने रोल किस तरीके से करना।
नहीं तो आप शिकायत कर रही हैं, आपने अनुभव बता रही हैं।
हाँ जी,
आप जो
अनुभव बता रही हूँ।
अच्छा।
और मैंने जो, मतलब मैं तो जुड़ी हुई कहीं और से, लेकिन हमारे घर के पास ही आश्रम है ब्रह्म कुमारी जी का, तो वहाँ हम जाते हैं कभी कभी, जब कुछ होता है तो हम जाते हैं, और 15 दिन की मैंने क्लास भी ली थी, और यहाँ भी जब मैं कल आई हूँ तो मुझे, मतलब अनुभव ये हुआ कि सामने, मैं तो बिल्कुल सामने, जब मेडिटेशन हो रही थी तो सामने, मतलब जब मेरी नजर गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अंदर से ही कुछ बाबा जी कुछ, मतलब ऐसे ही वो कुछ कर रहे हैं कि खिंच रहा है मन अंदर से ही, तो इससे मतलब मेरा दिमाग, माइंड इतना हल्का हो गया कि जैसे सारे जो विचार थे वो सब मतलब कि निकल चुके हैं, मन बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, कहीं भी अगर मेडिटेशन होती है, कुछ होता, तो इस समागम को छोड़ना नहीं चाहिए।
थैंक यू।
हाँ जी।
और किसी का सवाल इसमें? मैं एक थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ा के एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, सद्भावना की बात हो रही है और नारी शक्ति की बात हो रही है। कुछ दिनों से 2-4 घटनाएं संसार, इस देश की सुर्खियां बनी हुई हैं। सोनम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी नारी शक्ति है, सद्भावना की अग्रदूत है, जिस तरीके से घटना हुई। फिर 1-2 और घटनाएं हुई, जो बेंगलोर वाली घटना हुई थी, एक वो घटना हुई, एक वो भी हो गई कि नीले ड्रम में काट के डाल दिया, एक वो भी घटना हुई। तो अगर अगर नारी शक्ति है तो फिर इस तरह की चीजें क्यों? क्या उस, अगर मान लीजिए आपके पास एक एटम बम का एक बटन दे दी जाए आपको और कह दिया जाए कि इसको तुमको अपने कंस्ट्रक्शन में लगाना है। अब आप आपके पास मालूम है कि आपके पास ताकत है, तो क्या कहीं इस नारी शक्ति का रिवर्स तो नहीं है कि वो इतने तक चली जाती है? नारी शक्ति तो सृजन करती है, नारी शक्ति तो मात्र छांव है, नारी शक्ति तो एक समाज है, नारी शक्ति तो एक परिवार है, नारी शक्ति एक वात्सल्य है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्या नारी शक्ति का रूप बदल गया है, या जो नारी की शक्ति थी वो वापस रिवर्स होकर आसुरी शक्ति में तब्दील हो गई है? कौन इसके बारे में बताएगा, या तो पैनल से सवाल पूछेगा? कोई है बताने वाला? आप बताएंगी? मैं ये कहता हूं कि आप शक्ति हैं, ठीक है, आप मानती है ना मैं शक्ति हूं? खड़ा हो जाइए। हाँ, आप मानती है मैं शक्ति हूं? सद्भावना की अग्रदूत तो मानती हूं। और अगर आपके बगल वाले ने आपको दो लाइन कुछ कह दिया और आपने उसके बदले उसको चार लाइन सुना दिया, फिर उसने चार लाइन सुनाया, फिर आपने आठ लाइन सुनाया, तो ये शक्ति का जो स्वरूप है, क्या वो समय समय पर कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रूप में, या शक्ति उस चीज को क्यों नहीं मेंटेन कर पाती? इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, जिस तरीके से सोनम के साथ हुई थी अभी, आप समझिए ना, वो गए थे त्रिपुरा में, वहां जिसको खाई से ढकेल दिया और तमाम कहानियां रची, उसके पहले एक बेंगलोर में घटना हुई जिसको काट के नीले ड्रम में डाल दिया, इस तरह की तमाम चीजें। तो अगर नारी शक्ति है तो नारी का यह रूप क्यों हो रहा है?
इसी तरफ से मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जो मुझे बहुत दिन से,
हाँ, इसका तो अपना ही क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले।
हाँ हाँ, तो मींस नारी जो है, नारी शक्ति है और ज्ञान से नारी बनती है। अभी बहुत सारे महिलाओं ने अपना परिचय दिया, मैं भी बहुत इससे गई हूँ, लेकिन बाबा का ज्ञान मैं कॉलेज से ले रही हूँ, तो मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन मिला कि अरे आगे का दुख दे रहा है, लेकिन वो दुखी है, वो उसका रोल है, बाबा ने जो बताया था कि वो उसका रोल है, वो दुखी है, तो वो हमें सहने की शक्ति देती, ऐसा मीन्स नारी शक्ति वहां पे बन जाती है ज्ञान से। सवाल मेरा ये है, अलका जैन करके केस थी, अपने 15 साल के बच्चों को एक माँ ने मार दिया, दूसरा भिगवन के पास पुणे में हमारे यहाँ, अपने दो बच्चों को, एक 3 साल का था, एक साल के थे, दोनों बच्चों को गला दबा के मार दिया। तो नारी शक्ति, मुझे ये क्वेश्चन बहुत दिन से है कि क्या हो रहा है, नारी एक माँ को ऐसे क्यों लग रहा है, उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी उस टाइम? एक माँ तो कभी भी अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाती, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये दीदी से
आप, हाँ, किससे पूछना
चाहिए? उषा दीदी से
पूछना थी। आप बताइए कि नारी शक्ति, क्या वो शक्ति का बदल गया रूप, उल्टा हो गया? और इन्होंने जो सवाल किया है ना, उस सवाल में दो सवाल हैं। एक तो चलो बच्चों के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो उसके बाद रिजल्ट आया होगा ना कि किस लिए किया है, ऐसा नहीं आया? अच्छा, मेंटल, चलिए उसमें वो आगे पूछेंगे।
ओम शांति। नारी एक शक्ति अवश्य है, लेकिन शायद उसकी शक्ति अनेक प्रकार के विकृतियों के कारण क्षीण हो गई है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे नारी शक्ति की भी अनेक प्रकार की जो विकृत इच्छाएं कहो, जैसे आपने सोनम का केस सुनाया, तो जहां विकृत इच्छाएं आ जाती है, बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, तब जाकर के ऐसे कदम उठा सकते हैं। या जैसे कहा कि नारी एक वात्सल्य स्वरूप है, लेकिन वात्सल्य मूर्त है, लेकिन वो अपने ही बच्चों का गला अगर दबा देती है, तो हो सकता है कि जैसे आज की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि अनेक प्रकार के मानसिक बीमारियां आने लगी है, सिज़ोफ्रेनिया जिसको कहा जाता है, और सिज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है कि उनके सामने जो भी आ जाए तो उसका गला दबाना ही है, चाहे वो अपना बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, या जो भी हो, मना वो अटैक करता ही है। तो वर्तमान समय के अंदर जो मानसिक विकृतियां आ रही है और उन मानसिक विकृतियों के कारण जो डिजीज, मेंटल डिजीज जिसको कहा जाए, उत्पन्न हो रहे हैं और इसलिए उनको मारने वक्त ये भी शायद एहसास नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं या क्या हो रहा है मेरे द्वारा। पता नहीं बाद में रियलाइजेशन होता भी होगा या नहीं होता होगा, लेकिन जब ऐसी मेंटल डिजीज होती है सिज़ोफ्रेनिया जैसी, तब जाकर के वो ऐसा कदम उठाते हैं। मैं समझती हूँ जितने भी केसेस इस तरह से विकृत स्वरूप के आए हैं सामने, ये बताता है कि मानसिक विकृतियां जब नारी के अंदर भी जन्म लेते, आखिर भी तो आत्मा है, इंसान है, तो वो आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई कि उसको होश ही नहीं है। आज योग का महत्व क्यों बताया जा रहा है कि ये जागृति लाने के लिए, आज ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसे कहा भाई नारी शक्ति अग्रदूत है सद्भावना की, तो वो इसीलिए कि भाई उनके अंदर जो वो स्पार्क है उसको पुनः जागृत करे, उसको चार्ज करे और उसको पॉजिटिवली जितना चार्ज किया जाए तभी तो वो सद्भावना की अग्रदूत बनेगी। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा चली गई है, माना बैटरी डिस्चार्ज होकर इतना नेगेटिव उसमें चली गई है कि वहां से उसको वापस ला करके नॉर्मल स्टेट पर और फिर उसकी बैटरी चार्ज करके उसको अग्रदूत बनाना। तो ये मैं समझती हूँ कि आज आत्मा की, वो शरीर को ना देख करके अगर आत्मा को ही देखे तो वो आत्मा इतनी बैटरी डिस्चार्ज है, इतनी विकृति इसके अंदर जो प्रकट हो रही है, ये विकृति के उसके बाद भी उसको कोई प्रकार का पश्चाताप नहीं है या उसने कुछ गलत किया है उसका एहसास नहीं है, तो ये बताता है कि ये विकृति की भी चरम सीमा है। इसीलिए
और किसी का सवाल इससे जुड़ा हुआ? जी हाँ? नहीं, आप सवाल पूछेंगे कुछ बात बताएंगे।
सर मैं ये ही इसी से रिलेटेड है, मैं 2 साल से ज्ञान में आई हूँ, उषा दीदी को सुनती रही हूँ, तो अभी ये जो रिलेशन से ये जो अभी कुछ घटनाओं को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक आना चाहूंगी। ये जो अपराध निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया का, जो जिस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से जो गलत कंटेंट होते हैं उनको ज्यादा देखा जा रहा है। इसको देखने की वजह से जो परिवार को जो टाइम मिलना चाहिए वो टाइम कटता चला जा रहा है, ना तो हस्बैंड वाइफ के पास में टाइम है ना बच्चों के लिए टाइम है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और गलत कंटेंट है वो जिस तरीके से प्रचारित हो रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि गंदगी हमारे समाज में फैलती चली जा रही है, मतलब जो सकारात्मक चीजें हैं उनको कम देखते हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं फोन साइट्स वगैरह उनको ज्यादा देखते हैं, तो इसकी वजह से अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक और बात है सर कि जैसे अपराध हो गया, एक कोई भी अपराध हो गया तो उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाता है, उस पर लाइक्स और कमेंट्स व्यूअर्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कचरा एक कोने में पड़ा हुआ था उसको एक ने आगे फैलाया, 2-4 ने और उनको शेयर किया, तो कहीं ना कहीं वो जो गलत कंटेंट है वो जहां एक कोने में था कुछ लोग उससे प्रभावित होते, वो एक पूरे कंट्री को प्रभावित कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले डिप्रेशन के बहुत कम मरीज होते थे, लेकिन आज हमारा इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो इसका शिकार बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं, हर एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, और वो बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल होनहार बच्चे होते हैं, मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड का एक तरीके से माइंड बिल्कुल पजल्ड हो गया है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है सर एक कारण इसका, ये मैं अपनी तरफ से
कहूं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इन्होंने कहा कि इसका पूरा ठिकरा जो है सोशल मीडिया पर फोड़ दिया इन्होंने, तो क्या आप मानती हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया ही इसका जिम्मेदार है?
सर कोमल भाई, मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ।
पैनल डिस्कशन का टॉपिक मुझे मिला तो आज का मैंने मेरा जो होमवर्क प्रिपेयर किया था वो इसी दिशा में था कि एक नारी सोशल मीडिया की गलत चीजें फॉरवर्ड न करके कैसे सद्भावना की शक्ति बन सकती है, हाउ वी कैन स्टॉप शेयरिंग द नेगेटिविटीज विच वी गेट। एक सर्वे के हिसाब से मेट्रो सिटीज में 97.5 वीमेन आर यूजिंग मोबाइल फॉर मिनिमम 7 to 8 hours. दिस इज ऑफिशियल रिसर्च डेटा। अगर वीमेन 97.5% वीमेन के हाथ में मोबाइल है तो 7 से 8 घंटे, जिसमें रिसर्च में आगे ये भी है कि उसमें ज्यादा सर्फिंग साइट्स में है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, और दूसरा है रील्स। और रील्स की जब बात आती है तो जो जितना भी इन्होंने बताया कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हमें जो भी जो पैनिक अटैक्स आते हैं या हम अकेलापन है, ये सारी चीजें, हमारा लो कॉन्फिडेंस है या इनसिक्योरिटीज है, ये सब का कारण रील्स है। ये साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, यहाँ सब पढ़ी लिखी सन्नारियां हैं। मेरा रिसर्च इसी दिशा में था कि मैं आज बात करूं इस दिशा में कि हम जो सोशल मीडिया सेवी आज हो गए हैं, आज की सन्नारी जो सोशल मीडिया सेवी है, हाईटेक विमेन है, कॉरपोरेट में काम करती हैं, लैपटॉप यूज करती हैं, हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करें न करें, देखें न, कुछ चीजें हम नहीं देखना चाहते फिर भी पॉपअप हो जाती हैं, हम इनका प्रसार प्रचार ना करें, इतनी तो हम सद्भावना रख ही सकती हैं और इतनी सद्भावना की संकल्प शक्ति कर सकती हैं। दूसरा, हाथ में स्मार्टफोन्स हैं लेकिन वी हैव एक्चुअली नॉट बिकम स्मार्ट। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, चाइल्ड लॉक है, यूट्यूब कंट्रोलर है, यूट्यूब में भी चाइल्ड लॉक है, ये सब आप डालिए तो बच्चा अगर फोन ले भी लेता है तो वो वही चीजें देख सकेगा जिसका उसे एक्सेस है। तो ये सद्भावना हमारे परिवार की तरफ की ये है कि अगर एक कॉमन स्मार्टफोन घर में है जिसे बच्चा भी यूज करता है, मदर भी यूज करती है, क्योंकि होमवर्क का स्टडी मटेरियल, सारा मटेरियल पेरेंट्स टीचर, अभी डिजिटाइजेशन हाईटेक एजुकेशन वर्ल्ड में सारे टीचर्स मोबाइल पे भेजते हैं, तो माओं को मोबाइल भी देना पड़ता है बच्चों को। बट हैव यू एवर नोटिस दैट यू हैव लॉक्ड दैट ऑन सर्टन साइट्स? यूट्यूब लॉक किया है कि नहीं? कोई सेंसर वाले साइट्स आपने लॉक किए हैं भी नहीं? आपने जो बायजूस वगैरह जितना एजुकेशनल कंटेंट का जो भी सब्सक्रिप्शन लिया है उस पर भी कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं, तो उसको आपने ब्लॉक किया है कि नहीं? तो इस तरह से एक एडुकेटेड नारी सद्भावना की प्रसार प्रचार में भूमिका ला सकती है। कैसे मैं परिवार को, आज हम मीडिया के ट्रैफिक में फंस गए हैं, वी आर, हम इसके टेक्नोलॉजी का प्रोज एंड कॉन्स है ना, उसमें हम आज उसके शिकार भी होते चले हैं। तो एक नारी की, एक पढ़ी लिखी नारी की भूमिका ये भी है अपने परिवार के प्रति कि कैसे इस साधन का, स्मार्टफोन का, स्मार्टली इस्तेमाल करें। तो ये एक सद्भावना रहेगी मेरे बच्चे के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, कि वो जो चीज का एक्सेस उसको अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो ना हो। और मैं खुद भी सोशल मीडिया का कॉन्शियसली, जब मेरा बच्चा आसपास नहीं है या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक फिक्स टाइम सेट करूं। जैसे योगा के लिए आपने टाइम सेट किया है, राजलोक ध्यान के लिए टाइम सेट किया है ना, सोशल मीडिया के लिए भी टाइम सेट करो। 10 मिनट बहुत हो गया, काफी है, इससे ज्यादा सोशल मीडिया का नॉलेज हमें जरूरी भी नहीं है, है ना। कुछ लोग देखते ही रहते हैं, वो साइट पे से इस पे गए, इस पे गए, अच्छा अमेजोन पे सस्ता मिलता है, फ्लिपकार्ट पे कितना है, दोनों का कंपेयर करें फिर ऑर्डर करें। ऑनलाइन साइट्स हैव हैंग्ड अस एक्चुअली, और हम, हमारा जो रोल है वो एक्चुअली हम भूल गए हैं। तो ये हमारे साइड को, हमको खुद को भी आत्म टटोलना चाहिए कि हम कितना इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द रीजन फॉर दिस साइकोलॉजिकल सिचुएशन इन द फैमिलीज हैपनिंग, मदर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली।
इसमें कितने लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है? बाकी जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो किसको जिम्मेदार मानते हैं भाई? हैं? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो किसको जिम्मेदार मानते हैं, अपनी देवरानी को जेठानी को? हाँ, कितने लोग देवरानी को मानते हैं? सवाल वो नहीं हो रहा, सवाल तो ये हो रहा है कि ये जो नारी के शक्ति का जो रूप बदल गया है उसकी जिम्मेदार सोशल मीडिया है। मीडिया पे ठिकरा तो फोड़ दिया उन्होंने। हमने कहा कि इसमें से ये बताइए कि कितने लोग मानते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने उठाया, फिर कुछ लोगों ने नहीं उठाया, तो मैंने कहा कि कौन और जिम्मेदार है, आपकी बगल वाली देवरानी जिम्मेदार है, जेठानी देवरानी है? तो उसमें भी लोग हंसे कि हाँ, कुछ देवरानी भी जिम्मेदार है, कुछ जेठानी भी जिम्मेदार है। अब बोलो तो नहीं देखते ना, तो कितने लोग मानते हैं कि देवरानी जिम्मेदार है, हाथ उठाओ, और कितने लोग मानते हैं कि जेठानी देवरान जिम्मेदार है? ये दोनों 50-50 हैं। हाँ, आप तो बोल चुकी हैं ना, दूसरे लोगों को थोड़ा सा बोलने दीजिए। या सोच रहे होंगे कि हम कैसे बोल दें, अरे आपके साथ भी तो हो रहा है। ये सवाल यहाँ पे हो रहा है कि जब आप सद्भावना की अगर दूत हैं, आप नारी शक्ति हैं, तो ये घटना हो क्यों रही है? तो किसी ने कहा सोशल मीडिया इसके जिम्मेदार है। सोशल मीडिया की पहले ये नहीं होता था क्या? तो जब अगर सोशल मीडिया के पहले होता था तो उस समय जिम्मेदार कौन था? इसके बारे में मैं, हमारी जो विदेश से बहन जी आई यूएसए वाली, आप ही बता दीजिए इसका जिम्मेदार, क्योंकि आप तो वहां से वापस अब लोग लौट रहे हैं अमेरिका में, तो पहले सब इस्तेमाल करके अब धीरे धीरे भारत में आते हैं तो फटे पैजामा पहन के घूमते हैं कि भारत की कल्चर यही है अपनाने के लिए। तो आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है?
ओम शांति। यार, सोशल मीडिया तो कलयुग है, जैसा है वैसा ही होता है। यू कांट एक्सपेक्ट एवरी वन टू क्रिएट ब्यूटिफुल वीडियोज। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक कलयुग अंत है जिसको 6 बिलियन सोल्स आए जस्ट लास्ट 200 ईयर्स में, एंड वी नो वॉट काइंड ऑफ कंटेंट दे क्रिएट। सो जो होता है होता है, पर हम डिसीशन लेना कि कैसा कंटेंट वॉच करना चाहते हैं। अभी मेरे फोन में आते हैं, जस्ट देखने से ही पता चलता है ज्ञान का यूजफुल है या नहीं यूजफुल है, नहीं तो मैं ओपन भी नहीं करूँगी। और मैं ये भी देखा, उधर बच्चे एंड मे बी हेयर ऑल्सो अपना फोन का पासवर्ड पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। मेरी डॉटर 14 ईयर्स ओल्ड है, तो जब से वो छोटी थी थोड़ा समझ आया था, मेरा फोन का पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, एवरीथिंग आई यूज टू शेयर। मेरा कुछ भी प्राइवेसी नहीं है, एवरीवन इन माय फैमिली, माय हस्बैंड, एवरीवन नोज माय पासवर्ड। तो मेरे बेटी को यही आदत हो गया, चलो मम्मी का फोन ओपन करे तो और कुछ नहीं देखती हो, चाहे देख तो ब्रह्म कुमारी का वीडियो देखती है, ज्ञान का सॉन्ग सुनती है, बस इतना ही। मैं साड़ी वाड़ी वो बुरी को भी नहीं देखती हूँ मैं। तो उसको भी आदत हो गया, चलो मम्मी अम्मा इज नॉट स्पिटिंग पासवर्ड अ सीक्रेट, तो मैं भी मेरा पासवर्ड चेंज करूँ, सॉरी पासवर्ड शेयर करूँ। तो उनका भी पासवर्ड मुझे पता है, तो उनका फोन में क्या चल रहा है। तो एवरीथिंग स्टार्ट विथ मॉम। You choose what you are watching. You cannot control social media. You cannot control what kind of content people are creating. You make decisions. You choose what you want to watch. Even if someone opens the phone, open करे, क्या देखते हैं? जो अच्छा है वो देखे तो अच्छा है ना। अभी एक बार फोन का प्रॉब्लम हुआ, अरे शायद तुम्हारा फोन हैक हो गया। मैंने सोचा चलो हैक होने दो, वो भी जाए ब्रह्म कुमारी वीडियो देखेंगे, और क्या मिलेगा मेरे फोन में। So we have to choose what we want to choose, and same thing kids learn from us. Thank you.
अच्छा, मुझे लगता है देवरानी जेठानी के अलावा सास ज्यादा जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो बहू को समझती नहीं कि मेरी बेटी है। इसमें भी बहुत बहुत रहता है, इसमें बहुत सारी कैसे जाती हैं कि सास भी जो है अपनी जितनी बहुएं आती हैं उसको अपनी बेटी नहीं समझती, उनको अपनी बेटी ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लगती है, तो इसमें ज्यादा वो भी जिम्मेदार होती हूँ, ऐसा है ना। मैं गीता दीदी से पूछना चाहता हूँ, गीता दीदी आप बताइए कि सोशल मीडिया के पहले अगर घटना होती थी तो कौन जिम्मेदार था, और क्या इसको रोका जा सकता है क्या? क्योंकि मोबाइल बंद तो नहीं किया जा सकता, आदमी खाना छोड़ देगा पर मोबाइल नहीं छोड़ सकता है, मोबाइल गया मतलब जान निकल गई।
ओम शांति। हमें इतना ज्यादा प्रभावित कोई भी साधन से नहीं होना चाहिए, जबकि इन साधनों से हम देख रहे हैं कि हमारा माइंड भी प्रभावित किया जा रहा है, हमारी जीवन पद्धति भी प्रभावित की जाती है, और हमारे आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं। यही हमारा सर्वस्व है, हमारा संबंध, हमारा जीवन, हमारा माइंड, सब कुछ इन चीजों से प्रभावित हो रहा है। तो तो क्यों नहीं हम ये साधन छोड़े और अपने आप को ज्ञान योग ध्यान के द्वारा प्रभावित करें, अपने जीवन को इस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई से व्यस्त करें और इन साधनों के को कम करें। अगर ये हमारा सही उत्तर है तो हमें इसको अपनाना चाहिए, इन साधनों और इन साधनों के द्वारा जो प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि आजकल आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आइए ना, आ जाइए।
ओम शांति। जैसा अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि सारा ठीकरा फोड़ दिया गया मीडिया पर, हकीकत है जिन्होंने हाथ उठाया उनका ये कहना है ही कि मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि हाथ में हमारी जो खिलौना है मोबाइल नाम का, मेरे कंट्रोल में है, मैं क्या देखती हूं, कितना देखती हूं, बच्चे पर भी वो असर करता है। हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमारे बच्चे अछूते नहीं है। जैसे सिस्टर ने कहा, उनकी 14 इयर्स ओल्ड बेटी ने जो भी कहा, ये कैसे अपना पासवर्ड इन्होंने शेयर किया, तो उन्होंने भी किया। मेरा भी बच्चा जब 14 इयर्स का था, मैं शुरुआती दौर पे जुड़ी हुई थी ब्रह्मा कुमारी से, तो मेरा बेटा एक दिन हम शाम को कोई पार्टी में जाने तैयार हो रहे थे, वो तैयार होके आया, मेरे सामने खड़ा हुआ और मेरे को पूछा, मम्मा मैं कैसा दिख रहा हूं। मैंने नीचे से उसे देखा, अच्छी ड्रेसअप में वो था, तो मैंने कहा हाँ बेटा अच्छे लग रहे हो। उसने करके ऊपर इशारा किया और बोला इधर देखो। मैंने देखा वो लाल हरा कुछ जेल लगाया हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, उसने कहा कैसा दिख रहा है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है बेटा, कहाँ से मिला। तो वो अपने एक फ्रेंड का नाम लिया, उसके पापा ने उसे दिया है। मैंने कहा एक बार आप आईना देख के आओ। तो वो देख के आ गया, वापस आके जेब में हाथ डाल के उचकते हुए कहता है मम्मा अच्छा तो दिख रहा है प्लीज। तो मैंने कहा देखो बेटा, उसके पापा को पसंद होगा उनका बेटा लगाए, तुम्हारी मम्मा को नहीं पसंद है, तुम ऐसा लगाओ तो प्लीज। तो बोलता है मम्मा प्लीज जाने दो ना। तो जब तक उसको मैंने एक बार फिर कहा चेक करके आओ, वो जब गया, मैं साड़ी पिनअप कर रही थी यहाँ पे, फंक्शन में जाना था, तो वो आया, मैंने साड़ी यहाँ नहीं पिनअप करके कमर में घुमा के खोस लिया और मैंने कहा मैं कैसी लग रही हूं। तो उसने इतना हिस्सा देख के ऐसे कहा, मैंने कहा इधर देख, मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में ऐसे चलूं, चलेगा। तो ऐसे सिर हिलाया और विद इन टू से थ्री मिनट के अंदर वो सिर धो करके आ गया मेरे सामने। मैंने कहा थैंक यू सो मच बेटा, क्योंकि टीनेजर बच्चे को समझाना, स्ट्रिक्ट होके बोलना बहुत मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। मैंने उसे कहा बेटा थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मुझसे जुड़ी है, मेरी इज्जत तुमसे जुड़ी है। यदि मैं तुम्हारे साथ साड़ी ऐसे बांध के जाती, तुम्हारी फ्रेंड्स कहते अनीश तूने अपनी मम्मा को समझाया नहीं क्या, कितने वाहियात तरीके से साड़ी पहनी थी, उसी तरह तुम ऐसे बाल लगा के जाते तो लोग कहते बड़ी समाज सेविका बनी फिरती है, दुनिया जहान के बच्चों को उठक बैठक कराती है, पनिश करती है, शिकायत करके, शिकायत आता है तो उन्हें सुधार देती है, सुधार गृह में जाती है, अपने एक बच्चे को आवारा जैसा घुमा रही है, सॉरी मम्मा, बात खत्म हो गई। तो बात प्रभाव तो डालता है मीडिया, कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को उस प्रभाव से कैसे मुक्त कर पाते उस टाइम पे। लेकिन मैंने जब वो बच्चा अंदर गया, मैं साड़ी पहन रही थी तो मैंने भगवान को याद किया, क्योंकि मैं मुझे जुड़े 4 साल हो गए थे ब्रह्मा कुमारी से, मैंने भगवान को याद किया। मैंने कहा उसे क्या कहूं, और वो टिक एक बात आ गई कि साड़ी यहाँ पिन नहीं करके कमर में डाल, वो बच्चा सुधर के आ जाए। थैंक यू सो मच।
पता नहीं अब जिसका बच्चा पूछने ही नहीं आता होगा कि मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसके क्या करेंगे, वो तो देखता होगा कि मम्मा सोई है, चुपचाप निकल लो पिछली गली से, उसको क्या करेंगे। मैं जनरल क्वेश्चन, आपका बेटा तो ठीक है आपके सामने आके पूछ लिया कि मम्मा मैं कैसा दिख रहा हूँ, और जिसका बेटी बेटा पिछली गली से निकलते हो कि मम्मा और पापा देख ना ले, पिछले से निकल जाओ, पीछे से घर में आ जाओ, वो क्या करेंगे, उसका भी तो सवाल है ना इसमें। और आप ये चीज समझिए कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है, लेकिन हर चीजों के लिए जिम्मेदार है। आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे को आध्यात्मिक कंटेंट देखना है तो YouTube आपको आध्यात्मिक कंटेंट भेजना शुरू कर देगा। अगर आपको रील देखना है तो रील भेज, केवल एक क्लिक करना है, उसके बाद जितने देर तक रहेंगे देश भर का वही सब आपको भेजेगा। तो अगर जो व्यक्ति सुबह उठ के मेडिटेशन का इस्तेमाल करता है तो वह YouTube लगातार आपको मेडिटेशन भेजेगा। अगर आप योग का इस्तेमाल करते हैं तो योग भेजेगा। अगर आप खाना खजाने का इस्तेमाल करते हैं तो खाना खजाना भेजेगा। तो दोष किसका, आपके देखने का या यूट्यूब का? जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको देता है। आपको भोजन चाहिए कि भाई मुझे ये रोटी खानी है तो आपको परोसने वाला रोटी दे रहा है। आपको चाहिए कि मुझे दाल खानी है तो दाल वाले ने दाल दे रहा है। तो ये बताना कि सोशल मीडिया पूर्णतः से जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, लेकिन वो हर चीजों के लिए, अगर बुरा चीज कर रहा है तो अच्छा चीज के लिए भी जिम्मेदार है। तो हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें से क्या देखें और क्या ना देखें। वो तो इतना है कि आप केवल सोच रहे हैं, आप केवल, आप किसी दिन YouTube के सामने आप रखिएगा और केवल सोचिएगा कि मुझे ये देखना है, थोड़ी देर के बाद उस तरह की रील आपके सामने आने लगेगी। इतना तक एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप जैसा, कभी भी सोशल मीडिया अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लिया कि मैं तुमको गलत कर रहा हूं। उसका कहना है कि तुम अगर बहुत विद्वान बनना चाहते हो तो ये कंटेंट लो, तुम IAS बनना चाहते हो तो ये कंटेंट लो, तमाम AI आ गया, ChatGPT आ गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको महिलाओं के इस पे कार्यक्रम में भाषण करना है तो उसको लिख दीजिए कि मुझे महिला दिवस पे भाषण करना है, वो पूरा कंटेंट चार तरीके से लिख के आपको दे देगा। तो आपको अच्छी चीजें भी तो दे रहा है ना वो, तो पूरी तरीके से कह देना कि नहीं यही जिम्मेदार है, हम भी तो जिम्मेदार हैं क्योंकि हमको देखने का शौक है, उसलिए आपको दे रहा है वो। आप देखना अगर आप अच्छी चीजें देगा। मैं इसके आगे बढ़ाते हुए, मैं गीता बहन जी कुछ आप बोलना चाह रही थी, बताइए।
आपने एक प्रश्न किया था कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी कुछ प्रॉब्लम्स होते थे तो तब क्या कारण था। तो एक चीज जो समझ में आती है कि हमारे घर में पहले माताएं स्वयं भोजन बनाती थी, बड़े प्यार से भगवान को भी भोग लगता था और बच्चों को प्यार से खिलाया जाता था। आजकल जब शादियां डिसाइड होती है तो हमें एक लेडी ने बहुत अच्छा बोला कि अभी हम आने वाली लड़की को, हमारे घर की जो बहू बनने वाली है, आजकल हम ये नहीं पूछ सकते कि तुम खाना बना लोगी कि नहीं, बल्कि ये पूछना पड़ रहा है कि खाना घर का खा लोगी कि नहीं। तो ये जो एक प्रवाह चला है कि हमें भोजन बनाना एक चीप सा काम लगने लगा और हम बाहर से भोजन ले रहे हैं, अधिकतर एक्स्ट्रा जो मिठाई नमकीन ये तो मंगा ही लेते हैं अधिकतर घरों में लोग। अच्छा, कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कुछ भी घर की खुशियां है, उस दिन होटल में पार्टी में जाना है। शादी, पहले शादी होती थी तो नाच गान वाले सिर्फ बाहर से आते थे, घर के लोग भोजन भी बनाते थे, प्यार से परोसते थे और बड़ा आनंद आता था कि भाई प्यार से मुंह में खिला रहे हैं। आजकल क्या हो गया है, घर के लोग बहुत दिनों से संगीत की तैयारियां करते हैं नाचने गाने की, और खाना बनाने वाले कई दिनों से बाहर से आ जाते हैं। आपको नहीं पता वो कैसे हैं, कितनी मजबूरी रहती होगी कि अपने घर के चार काम छोड़ के एक बंदा दूसरे के घर का खाना बनाने जाता है, वो मजबूर होगा कुछ तो। और उनके हाथों से प्रिपेयर भोजन जिसमें क्या वाइब्रेशन है, क्या भावनाएं हैं, उसका हमें ध्यान नहीं है, वो हम खिला रहे हैं अपने परिवारों को। फिर कहते हैं हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं है, हमारे परिवारजनों से हमारी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक, लेकिन कहते हैं कि दिल का रास्ता प्लेट से होके गुजरता है। तो अगर आज की तारीख में यहां बैठी महिलाओं से भी मैं पूछना चाहूं, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं, हम भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने ऐसे हैं जो इस काम को बड़े खुशी से करते हैं कि मैं अपने घर में खुद खाना बनाती हूं और अपने बच्चों को खिलाती हूं। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर यू। बाकी नई जनरेशन, मैं युवाओं के साथ काम करती हूं, आजकल लड़कियां शादी से पहले शर्त रखती है कि मैं खाना तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मैं पढ़ी लिखी हूं और ये काम नहीं करूंगी। लेकिन भोजन एक वाइब्रेशन देता है। एक सर्वे है कि यूके में 80s के दशक में एक नया कॉन्सेप्ट आया, होम विदाउट किचन। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट है जहां किचन की जरूरत नहीं है। जब से ये कॉन्सेप्ट आया उन दिनों में लगभग 20% शादियां डिवोर्स में बदलती थी यूके में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के चलते आज की तारीख में मोर देन 90% शादियां डिवोर्स में बदलने लगी है। क्योंकि घर में जब किचन नहीं है, माना वो वाइब्रेशनल फूड जिसमें हाई वाइब्रेशन है वो नहीं मिल रहा है, तो बॉन्डिंग नहीं बन रही है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम अगर सद्भावना की बात करते तो एक नियम रखें कि घर में भोजन बनेगा, बड़े प्यार से बनेगा, उस भोजन बनाने की क्रिया को हम तकलीफ देह ना माने, और साथ बैठ के भोजन करें। और जब साथ बैठ के भोजन करें तब कृपया इस बच्चे को दूर रखें और अच्छी तरह से पास में सब एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक बहुत अच्छी एक पहल हो सकती है कि हमारे बीच में हमारे घर के माहौल को बनाने में हम बहुत अच्छा है। और ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम बताते हैं जैसा अन्न वैसा मन, एज यू थिंक सो यू बिकम, पर थिंक जो हम थॉट्स हम लाएंगे वो कौन से लाते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे फूड का है। तो एक ये सॉल्यूशन के रूप में सद्भावना की अग्रदूत नारियों का ही रोल होता है किचन में, तो हम अपने किचन को भगवान के भोग बनने वाली भावना से करें तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और सोशल मीडिया के लिए एक लाइन में मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मैडम ने कहा कि 7 से 8 घंटा एवरेज हमारी बहनें भी आजकल मोबाइल में टाइम देती है, और जब आप मोबाइल पे लगे रहते तो आपका पोस्चर कैसा होता है, बॉडी का कैसा होता है, ऐसे तो नहीं होता। मैं कई बार महिलाओं को कहती हूं कि अगर 5-6 घंटे अननोन लोगों से रिश्ते जोड़ने में इसमें आप अपनी गर्दन झुका लेते हैं, कभी कभी घर में रिश्तों में कोई बात हो जाए तो झुक जाया करो, थोड़ी सी सॉरी कह दिया करो, बार सारी बातें ठीक हो जाती अगर थोड़ा सा झुकने का संस्कार हो जाए और आपस में प्रेम बढ़ जाए।
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब बड़ा संजीदा सवाल हो गया, और संजीदा सवाल ये भी हो गया जब इन्होंने ये कहा कि हमसे किसी ने, जब कहीं ये चर्चा चल रही थी तो किसी ने कहा कि अरे खाना हमारे यहाँ नहीं, कहीं और तो बन ही रहा है ना, तो हम नहीं बना रहे कोई और बना रहा है, बनी तो रहा है खाना, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से बना बनाया आ रहा है। तो बोला कि मैं बनाऊं या कोई और बनाऊं उससे क्या ही फर्क पड़ता। देखिए इसका फर्क पड़ता है, मैं तो ये कहता हूं कि आजकल जो ये परिपाटी चल पड़ी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं और उसको दाई पालती है, देखिए बच्चों के अंदर माँ का ममत्व तब उसके अंदर प्रवेश करता है जब माँ के छाती से चिपक के बच्चा माँ की गोद में पलता है, उसका वाइब्रेशन, उसका माहौल, उसकी सोच, उसकी थॉट। और होता क्या है कि दाई जब बच्चे को पालती है तो किस चीज के लिए पालती है, पैसे के लिए पालती है। वह ये नहीं सोच के पालेगी कि इस बच्चे की ग्रोथ हो जाए, इस बच्चे का मनोबल बढ़ जाए, इस बच्चे का, वो पैसे के लिए पालती है नौकरी के तौर पे। अब जब बच्चा बचपन से ही कमर्शियल रूप में पलेगा तो माँ बाप की ममता कहाँ जाएगी उसको। और यही बच्चे जब आगे चल करके माँ बाप का कोई कदर नहीं करते हैं, माँ बाप कमरे में सड़ जाते हैं, 8 दिन के बाद बच्चे का फोन आता है कि बाहर से निकालो और संस्कार कर दो, तो ये चीजें जो है निश्चित तौर पर बहुत पेनफुल होती हैं। तो जो हम बच्चों को ये हमने डाल दिया कि नहीं हमारी दाई पालेगी, आप 2 रुपया कम कमाइए लेकिन बच्चे की परवरिश खुद कीजिए, ताकि वो बच्चा जो सुख देगा उससे कई गुना रुपया आपको कमा के दे देगा वो। तो इस चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे सामने उषा दीदी बैठी हैं, उषा दीदी मैं ये बताइए आप कि भोजन, संघ और मीडिया, तीनों से बचने का तरीका क्या है और राजयोग की उसमें भूमिका क्या है।
ओम शांति। बहुत सुंदर बताया कि भोजन, संघ और मीडिया, इनसे दूर रहने का तरीका तो यही है कि जैसे राजयोग, मेडिटेशन, जितना और चीजों के लिए समय देते हैं, वर्तमान समय की आवश्यकता या कहे कि एक नेसेसिटी ये बन गई है कि हम ध्यान, मेडिटेशन के लिए भी समय निकालें, क्योंकि मन के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और ये ट्रैफिक को कम करने के लिए जितना मन को शांत करें, मन को चार्ज करें, ताकि हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो सहजता से विकसित हो। नारी शक्ति कहा, जब देवियों की मूर्तियों को देखते हैं तो देवियों के अंदर जो स्थिरता है वही उसकी शक्ति का प्रतीक है। चंचलता को कभी शक्ति नहीं माना गया। जितने स्थिरता एकाग्रता है यही उसको शक्ति बनाती है। ये स्थिरता एकाग्रता मन की विकसित करने के लिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। और बहुत सुंदर गीता बेन ने कहा कि भोजन उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कई बार ये सुनने को मिला है कि भाई अनेक सोर्सेस के माध्यम से 10 मिनट में खाना पहुंच जाता है, लेकिन क्या वो खाना इतना हेल्दी है? हेल्दी तो नहीं है। 10 मिनट में पहुंच गया वो चीज आपके पास, तो कई दिनों से तैयार की हुई होगी या कई घंटों पहले तैयार की गई होगी और वो आप तक पहुंच रही है। हो सकता है कि पिछले दिन का लेफ्ट ओवर हो, वो पहुंच रहा हो गर्म करके आपके पास में। तो हेल्थ तो बनती नहीं है। संग जब बुरा है तो संग भी आज मनुष्य को किस दिशा में ले जा रहा है, ये भी हम सभी प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अनुभव करते हैं। और सोशल मीडिया, और जब इन बातों के लिए टाइम है हमारे पास तो अवश्य थोड़ा टाइम ऐसा रूटीन हम बना दे अपने जीवन का कि मेडिटेशन भी मुझे रोज करना ही है। चाहे 10 मिनट हम जल्दी उठे, आधा घंटा जल्दी उठे, और जल्दी उठ करके भी हम अपना समय निकाले मेडिटेशन के लिए। नमः शाम का समय जो है वो भी जब मेडिटेशन करने के लिए हम निकालते हैं तो मेडिटेशन की जैसे जैसे आदत पड़ती जाएंगे और उसका रस जितना अनुभव होता जाएगा तो ये और बातों का जो रस है वो शायद कम होने लगेगा। और हम अपने आप में जिस तरह से बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस एकाग्रता स्थिरता से हमारे अंदर अवश्य आ सकती है। इसीलिए जैसे आज संसार के अंदर लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो जरूर है कि मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन कहीं हम थोड़ी ब्रेक लगा करके अपने जीवन को नॉर्मल करें, नॉर्मल करते जाएंगे तो अपने आप कभी कभी वो शांति भी बहुत अच्छी लगेगी। और उस शांति के अंदर जो खुशी मिलेगी वो और बातों में खुशी नहीं मिल सकती है। ये जरूर गीता बेन ने जब कहा कि होम विदाउट अ किचन, जब मैं चाइना हांगकांग के तरफ गई थी वहां पर छोटे छोटे फ्लैट्स और वहां खाली एक छोटी पेंट्री होती जहां गर्म पानी या ग्रीन टी बना सकते हैं, किचन होता ही नहीं है क्योंकि उन सबका किचन तो बाहर है, रोड साइड पर है। तो शायद वही कल्चर आज भारत में भी आ रहा है। अगर जागृति हम ले आए और धीरे धीरे खुद अपने हाथों से बनाने के एक शौक क्रिएट करें, शौक क्रिएट करने की जरूरत है, भले कैसे भी बने, हो सकता है एक दो बार ठीक न भी बने, लेकिन जैसे जैसे वो शौक बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी मनस्थिति भी जो इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है उसके बदले थोड़ा उसकी पेस स्लो होने लगेगी और फिर आप सेल्फ कंट्रोल भी अपना डेवलप कर सकेंगे। क्योंकि जैसे कहा कि भाई सारा दिन अगर मोबाइल और उसके ऊपर लगे रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते 7-8 घंटा, ये रिसर्च इनका कहता है कि भाई 7-8 घंटे लोग लगे रहते हैं, कई बार तो रात रात निकल जाती है। ऐसे भी सुनने में आया कि भाई ठीक से नींद नहीं करते हैं और रात में देखते जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना घंटा निकल गया, सुबह सोने का शायद समय मिलता है। तो इसलिए आंखें भी खराब, हेल्थ भी खराब, समय पर ठीक से नींद न मिलने कारण ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो भी खराब, ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो मेडिटेशन हमारे अंदर वो शक्ति विकसित करता है जिससे हम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल अपना डेवलप कर सके। जो बात शायद भगवान ने गीता में कही अर्जुन को कि हे अर्जुन, योग क्या चीज है? योग है स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। तो जहां हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर ये ले आए, तो नेचुरल है कि ये सेल्फ डिसिप्लिन ही आगे चल करके हमें बैलेंस लाना सिखाता, क्योंकि योग का दूसरा मतलब है बैलेंस। तो जीवन के अंदर बैलेंस ले आने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, और ये भी एक साइंस है। उस साइंस अर्थात उस लॉजिक को जो व्यक्ति समझ लेता है, तो जरूर है कि अपने जीवन के अंदर योग प्रैक्टिस जितना वो बढ़ाने लगता है धीरे 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 धीरे, इनिशियली हो सकता है कि वो न भी अच्छा लगे क्योंकि कभी किया नहीं है, बार बार वो चीज खींचती है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा कि एक कंपनी में बॉस जो था वो कुछ मीटिंग ले रहा था, और एक बहन जो थी कंटिन्यूअस फोन पर थी, माना वो रील देख रही थी। उसके बॉस ने उसको 3 बार कहा, प्लीज पे अटेंशन, मैं जो कह रहा हूं इस मीटिंग में प्लीज पे अटेंशन, फिर भी वो रखती थी, वापस ले लेती थी, वापस करने लगती थी। आखिर वो बॉस ने छीन लिया उसका फोन जाकर के। उसके बाद थोड़ी देर तो वो नॉर्मल बैठी, थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा, माना एडिक्शन, कोई भी चीज की एडिक्शन, जिस तरह से ड्रग एडिक्शन है आज, ये मोबाइल एडिक्शन जो है, तो अपने आप माना जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है कि किस तरह से झाग निकलने लगा और बेहोश गिर गई। वो बॉस इतना घबरा गया कि भाई उसको तुरंत मोबाइल दे दो। जैसे ही मोबाइल दे दिया वो होश में आ गई और झाग उसका ठीक हो गया। माना इस तरह का एडिक्शन जो है, तो एडिक्शन कोई भी चीज की बहुत बुरी हो, और उसके लिए व्यक्ति चाहता भी होगा अंदर से कंट्रोल करने, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पा रहा क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है। तो मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा हम स्वयं के अंदर वो शक्ति को विकसित करें जिससे ये अनेक प्रकार की जो एडिक्शंस है, उस एडिक्शन से हम अपने आप को फ्री कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी का। मैं आप लोगों से, ये तमाम जो चर्चा हुई है उस चर्चाओं के बीच में मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं कि जब बारिश होती है तो आप भीगना पसंद करते हैं या छाता लेकर चलना पसंद करते हैं? है? बताइए ना, छाता लेके। और जब तगड़ी धूप निकली हो तो सनस्क्रीन लगाना पसंद करते हैं या छतरी लेके चलना पसंद करते हैं या धूप में चलना पसंद करते हैं? है? आप जब ये बताइए कि धूप से चेहरा न जल जाए उसके लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, बारिश में भीग न जाए तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं, तो तमाम बारिशें हो रही हैं आपको बिगाड़ने की, तो उससे बचाव का तरीका तो कुछ आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी बिगड़ रहे हैं, आपका परिवार भी बिगड़ रहा है और समाज भी बिगड़ रहा है। तो ये जो राजयोग है वो छतरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं तो जब 17 साल का था तब इन बहनों के संपर्क में आया था, और आज धीरे धीरे लंबा अरसा हो गया कि ब्रह्मा कुमारीज में आके पूरा जीवन ही यही पूरा परिवार हो गया। घर में 4 परिवारों में रहना कठिन है, यहां तो लाखों परिवार में रहते हैं तो भी लगता है कि ये परिवार छोटा ही है, ऐसा दृष्टिकोण बदला है। तो अगर हम लोगों का दृष्टिकोण, हम लोग भी तो यूथ ही थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे, तो मैं कहता हूं कि जब अगर आप लोग राजयोग ध्यान का अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तो हर सास मां दिखेगी और हर बहू बेटी दिखेगी, फिर उस घर में सद्भावना का शक्ति का अवतार होगा। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ऐसे, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें 46,000 हैं। कितनी हैं? 46,000। और दुनिया भर के जितनी ब्रांच है सबकी मालिक यही है। हम लोग तो पीछे सेवाधारी हैं, झोला ढोने वाले, हमारे यहां बहन ही सब कुछ हैं। दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहनों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाला। तो अगर हमारी बहनों को अगर इतना ऊंचा स्थान दिया जा सकता है, तो राजयोग ध्यान करेंगे तो आपके घर में भी आपको देवी का ही रूप दिया जाएगा। फिर वह घर घर नहीं होगा, वह घर स्वर्ग होगा, हर कोई अपना होगा, हर कोई अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं होगा। वो हमारी कमी कमजोरी है कि हम अच्छा को अच्छा नहीं कह पाते हैं। हमारे बगल वाले ने अच्छी साड़ी पहन ली तो हमारे मन में जलन होने लगी कि अच्छी साड़ी कहां से पहन ली आज। अगर किसी ने कह दिया कि वो तो बहुत अच्छी लग रही है, आपकी नहीं बनती है, तो दोस्तों आप गुलामी कर देंगे, अरे नहीं नहीं तो पता नहीं कहां से ले आई होगी, तुमको समझ में नहीं आता है। वो आपको ज्यादा सुकून लगेगा उसके बारे में, पर चिंतन करने में अच्छा लगेगा। ये हमारी कमी है, और यह कमी हमारे पड़ोसी को नहीं परेशान करती है, यह कमी हमें परेशान करती है, हमारे परिवार को परेशान करती है, हमारे बच्चों को तबाह करती है, जिसके कारण ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो राजयोग ध्यान है, उस राजयोग ध्यान को आप खुद करिए। खाना कैसे बनाना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, सुबह कैसे उठना है, शाम को कैसे उठना है, सोना कैसे है, चलना कैसा है, सास से कैसे बात करनी, ससुर से कैसे बात करनी, बच्चों से कैसे बात करनी, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाती है, जिससे घर गृहस्थ आश्रम में बदल जाएगा। ये भी आश्रम में ही आया ना, लेकिन आपको जो दीदियों का व्यवहार है, आपको लग रहा है कि नहीं ये लोग सन्यासी हैं? लगता है किसको? लग रहा है कि सन्यासी हैं, चलो इनकी चरण वंदना कर लो, लाइन लगा लो, कहीं वो श्राप न दे दें, ऐसा ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा ना? लगता है ना कि दीदी हमारी अपनी बहन है, घर के लोगों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। तो अगर ये लोग ज्यादा मोहब्बत कर सकती हैं, तो अगर ये ज्ञान आपके परिवार में आ जाए, तो हर घर गृहस्थ से आश्रम बन जाएगा, और जहां गृहस्थ आश्रम होगा वहां घर स्वर्ग होगा। तो ये भगवान ने जो आप लोगों को भेजा है चुन करके यहां, इसीलिए भेजा है। और मैं कहता हूं कि हमारे यहां एक योगा जी हैं, इनके इनके पास भी मैं आता हूं, अर्चना जी आप बता दीजिए कि इसमें योग की कितनी भूमिका है। आप तो कौन सा योग कराती हैं, राजयोग या वो प्राणायाम वाला, कौन सा?
हम लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो अष्टांग योग भी है, और देखो लय योग, आप भोजन करोगे तो मंत्र योग, तो योग सीमित नहीं है। आप लोग सब अपने जीवन में योग कर रहे हैं, जीवन शैली जो है, जो बनाया आपने, दीदी ने जो कहा है, तत् अथ योग अनुशासनम, है ना, डिसिप्लिन में है, यहाँ आप लोग सभी योग में बैठे हैं। लेकिन जो भाई जी कह रहे हैं ना, पहले अच्छा का पूछा, फिर वो मेंटल हेल्थ पे केस आया, फिर वो एक प्रेम के विकृत रूप का केस आया कि आत्मा की जो शक्ति है कितनी कम है। तो हर चीज का जो सल्यूशन है, मैं कहना चाहूंगी वो सब हमारी संस्कृति में ही था, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण है, चाहे वो जल्दी जल्दी सो जाना है, घर पे जो भोजन बनाने की जो कला दीदी ने बोला है कि वो वाइब्रेशंस जो जाते हैं, और साथ ही में मतलब ये सब लगता बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और बट हर चीज जो सोच से शुरू हो रही है ना, एक थॉट से स्टार्ट होता है ना सारा, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स, और उसके बाद ये सारे क्राइम्स, है ना। ये हेल्दी मेंटल हेल्थ का तो कोई एग्जांपल नहीं है इसमें, तो ये सब करेक्ट कैसा होगा? तो करेक्शन का सलूशन राजयोग है ना। राजयोग कोई अलग स्कूल नहीं है, ये भी जैसे पतंजलि योग था, या जो इंडिया में जो भी आपके देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से हम लोगों ने उस टाइम किया था, है ना। दैट टाइम आई गॉट स्कॉलरशिप, लेकिन मेरी फैमिली में क्या बिलीफ सिस्टम था, योगा ज्यादा तो नहीं कर लोगी, मुझे समझ नहीं आया क्यों, उनका मतलब था कहीं मैरिज ना करे, कहीं ज्यादा तो योग में नहीं चली जाओगे, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप एक कोर्स कर रहे हो अष्टांग योग का। इस सेंटर में भी आते हो तो आपके जो शुभ चिंतक होते हैं, चले जाओ सफेद साड़ी मत पहन लेना, मतलब एक जो डर है, देखो आत्मशक्ति कितनी विकृत है, हम एक सिंपल सी चीज, हम कितने बॉडी कॉन्शियस है, हम सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमें इतनी पार ही नहीं है कि हम वाइट कपड़ा धारण कर लें और ये सेल्फ रियलाइजेशन कर लें कि हम एक सोल है, और ये सब चीजें। तो बिल्कुल सही है भाई जी, हर चीज में योग से ही सब संभव है। लगता बोरिंग है बट करना आज की बहुत जरूरत है। धन्यवाद,
जानते हैं, थैंक यू आपका। आजकल लोग अच्छाई से डरते हैं, तकलीफ तो ये है, माना भगत सिंह पैदा होना चाहिए बेटा, लेकिन बगल के घर वाले में पैदा होना चाहिए, हमारे यहां नहीं पैदा होना चाहिए। अगर आप अच्छा करने जाएंगे ना, आप राजयोग का जब अभ्यास करेंगे, जाहिर सी बात है कि आपको जीवन में बदलाव आएगा, तो जो आपका पड़ोसी होगा, जो आपसे जलता होगा, सोचेगा कि अरे अच्छा ना बन जाए, इसको कुछ और करो, कि रास्ता ही छोड़ दे, तो जो माया है, जो कमजोरी भी है ना, वो परेशान करेगी आपको। तो जब आप अच्छा करने जाएंगे तो व्यवधान बहुत पैदा होगा, फिर लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बड़ा ये तो ज्ञानी हो गए, ये तो बड़ी पंडिताइन हो गई, तमाम तरह की चीजें आजकल होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अच्छा करने जाएंगे, और आज समाज बिल्कुल उल्टा बह रहा है, आजकल ऐसी दुनिया हो गई जिसमें कल्पना करना कठिन है। आप सोचिए ना, कि आज हमने खबर पढ़ी कि भाई बहन ने मिलकर शादी कर ली है। क्या इस समाज की कल्पना हमने की थी? बाप बेटी शादी कर रहे हैं, इस समाज की हमने कल्पना की थी? यही हमारा समाज है, यही नारी शक्ति है। आज हमारी मानवता शून्य में है। हम इंसान नहीं हैं, हम असुरों से भी ज्यादा खराब हो गए। वो असुरों में तो एक सभ्यता थी, रावण में एक सभ्यता थी कि सीता को ले गया था तो बाइज्जत उसने रखा था जब तक उनकी मर्जी नहीं, हाथ नहीं लगाया था। लेकिन आज जो कुछ समाज में हो रहा है, क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं? हम रील पे मर रहे हैं। मैं देखता हूं कि कई रोड पे अंग प्रदर्शन इतने हो रहे हैं, उसको हम जायज ठहराते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। ये सब जो है आसुरी संस्कार है। और अगर हमको आसुरी संस्कार से अपने घर को सुकून में बदलना है, अपने अंदर शांति में बदलना है, तो आपको अपने संस्कारों को जगाना होगा। और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन एक मंत्र और देता है। इसमें कितने लोग हैं जो भगवान को पाने के लिए कोशिश करते हैं, मंत्र वंत्र पूजा पाठ करते हैं? कितनी माताएं कर बहने करती, जरा हाथ उठाए। नहीं करती हैं। सुबह सुबह पूजा पाठ कितने लोग करते हैं इसमें? तो यही इसीलिए करते होंगे ना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, इसीलिए करते हैं ना, या इसलिए करते हैं कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए या हमारा बेटा ठीक हो जाए। अरे अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहां जो राजयोग ध्यान है वो भगवान से डायरेक्ट बात करने का तरीका बताता है। आपको अगर झगड़ा भी करना हो ना तो पड़ोसी के बजाय भगवान से झगड़ा कर लेना, और उलहना भी देना हो ना, शिकायत तो कर रही थी बहन जी जो कि मैं शिकायत भगवान से है, तो सुबह सुबह शिकायत कर देंगी तो आपकी शिकायत पे गौर करेगा और आपके झगड़े का सलूशन कर देगा। किसी आदमी के पास जाएंगी तो अगर उससे नहीं बनते तो चार और आपको उकसा देगा कि और आपका झगड़ा हो जाए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है, और वो भगवान से बात करने का तरीका है ब्रह्मा कुमारी दीदियां बनाती हैं। इसलिए आप लोग भगवान के सिलेक्टेड हो, यहाँ पे जो आए हो भगवान का ज्ञान सुनने के लिए, भगवान ने आपको बुलाया है। आप ही लोग घर को स्वर्ग बनाओगे जो तो आपको देख करके दूसरा बदलेगा। ये आपकी एक एक जो है जीवन की सबसे अमूल्य ट्रिप है। आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं इस चीज को? आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे? तो इसलिए आप जितना समय निकालते हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के अपने आश्रम पे जाएं और राजयोग ध्यान करें। पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री फंड का मामला है। बस आप भी ठीक रहेंगे, आपका परिवार भी ठीक रहेगा और आपके बच्चे और सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, चक्रधारी दीदी ने हमें बोलने का अवसर दिया, सविता बहन जी ने। आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हमारे तमाम मंचासीन अतिथियों का मैं शुक्रगुजार हूं। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं। बहनों की संस्था है, भाई लोगों का तो उसमें हक होता नहीं, फिर भी मैं माफी मांग लेता हूं अगर कोई मेरी बात बुरी लग गई हो तो। आप लोगों ने मुझे सुना, हमारे मंच के लोगों को सुना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इसमें सत्र में। और मैं आदरणीय चक्रधारी दीदी से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनको सौगात भेंट करके सम्मानित करेंगे। आदरणीय दीदी आ पाएं। और अनाउंसमेंट है, बिल्कुल हम लोग एकदम राइट टाइम है, 5 मिनट में हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी समय पे। आज शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम 8:30 बजे से है, तो आप सभी भोजन करके और यहाँ पे आके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। कल सुबह 4 बजे जो अमृत वेला है, अमृत वेला आप लोग समझ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे का सबसे सर्वोत्तम टाइम भगवान से बात करने का। ब्रह्मा कुमारी की जो सबसे सीक्रेट पॉइंट ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया भर में ये लोग ध्यान करते हैं, भगवान से बात करते हैं, और इनकी अपील सारी भगवान के पास जाती है और इनके सारे काम भगवान के जरिए होते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त आप जरूर अटेंड करना, आप लोग को सुबह 4 आज कल सुबह यहाँ पे 4 बजे यहीं पे, और सुबह 6:45 बजे शिविर का दूसरा सत्र यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग अमृत वेले में जाके फिर स्नान वगैरह करके फिर आप यहाँ पे 6:45 बजे आएंगे, तो सत्र जो है राजयोग शिविर का जो ज्ञान ध्यान सिखाया जाएगा उसमें। आइए दीदी, थैंक यू दीदी। कुछ आशीर्वचन देना चाहती हैं?
ओम शांति। क्योंकि मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं अपने आदरणीय मेहमानों का स्वागत करूं छोटी सी गिफ्ट देकर, लेकिन उससे पूर्व मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि ये समय जिस समय को कलयुग कहा गया है, कलयुग का मतलब ही है तामसिकता, और जब तामसिकता अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है उस समय उसका समाधान मनुष्यों के पास नहीं होता। वैसे भी कोई बात होपलेस हो जाती है, कहते भगवान अब आप ही एक सहारा, तो मैं ऐसा समझती हूं कि समस्याओं का वर्णन हुआ, समाधान सुनाने की कोशिश की और काफी सुंदर सुंदर समाधान सुनाए भी सही, लेकिन आखिर हमारे भाई योग के ऊपर ही जोर दे रहे थे। तो मैं जैसे कि फर्स्ट डे ये बोल रही थी कि एक भ्रमरी भी अपनी संतान उसकी नहीं होती, लेकिन वो कैसे कीड़े को ला करके उस घर के अंदर रख के बाहर बैठ के बू बू करती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कीड़ा भ्रमरी का रूप बन जाता है और उस घर से उड़कर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार आज जो समय है, जो प्रैक्टिकल अनुभव में देखा गया, वो आपके वचन काम नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकल कुछ ऐसा रूप बना भी लें, हाँ कोई बच्चा कहेगा मम्मी अच्छा नहीं लगता, कोई कहेगा हो सकता है आजकल ये मॉडर्न फैशन हो, कोई बात नहीं मम्मी चलो मैं भी मॉडर्न में बना हूँ आप भी मॉडर्न है, कोई मालूम नहीं वो क्या उत्तर दे देगा। मैं ऐसा समझती हूँ हम होपलेस कभी ना बने। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने हम बच्चों को यही बताया कि योग ही एक अंतिम साधन। अगर आप किसी भी बच्चे की, पति की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, स्वयं की कोई ऐसी नेचर या ऐसा संस्कार या ऐसी प्रॉब्लम जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे और उसको समाधान करना चाहते, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हमें भोगना पड़ता है, वो जल्दी से समाप्त नहीं होती, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका समाधान जल्दी हो सकता है अगर उसके लिए उपाय बढ़ता जाए तो मैं ऐसा समझूंगी कि अगर बच्चों में इस प्रकार देखने का, ज़्यादा मोबाइल में समय व्यस्त करने का या किसी प्रकार के दोस्तों के संग में आकर व्यसन की आदति बनने का कुछ भी प्रकार की बात है, तो आप कुछ दिन लगातार उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को, सरल समस्याओं का हल करने वाले को जिसे कहते हैं विघ्न विनाशक, वो विघ्नों को विनाश करने वाले हैं, उनकी याद में बैठ करके यही कहिए। मान लीजिए बेटे की कोई कमी देख रहे हो तो कमी का चिंतन ना करना, कमी का वर्णन नहीं करना, लेकिन अपने बेटे को उस कमी से छूटा हुआ एक दिव्य श्रेष्ठ हीरा ऐसा मेरा बेटा है, उसे उसी सुंदर स्वरूप में देखना, उसके अंदर बहुत गुण है, बहुत शक्तियां हैं, वो मेरे नैनों का नूर है, जैसे मैं अंदर से इच्छा रखती हूँ सचमुच मुझे प्रभु ने वैसा ही बेटा दिया है। आप उसके सुंदर स्वरूप को, सतोगुणी स्वरूप को इमर्ज कीजिए, क्योंकि हर आत्मा के अंदर श्रेष्ठता समाई हुई है, मर्ज फॉर्म में है, हमें उसको इमर्ज करना है। वो स्वयं नहीं कर सकता, ऐसे बच्चों को या ऐसे बड़ों को हमें सहयोग देना चाहिए। तो ईश्वर हम बच्चों को कहते हैं कि आप कुछ क्षण, जैसे कई व्रत बच्चों के लिए रखते हैं, कोई पति के लिए रखते हैं, परिवार के लिए रखते हैं, ये व्रत कभी 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 किसी बच्चे के लिए, कभी पति के लिए, कभी सास के लिए, कभी अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, आप ये व्रत जरूर रखो। एक मास 15 दिन उनको ऐसा देखो, इतनी दिव्य, जैसा आप उनको चाहते वैसा सुंदर दिव्य स्वरूप उनका देखो, और ईश्वर के साथ संबंध जोड़कर जो शक्ति मिले दाता, ये शक्ति सारे इन आत्माओं को जाए, और ये ऐसा सुंदर स्वरूप जो मैं देख रही हूँ यही स्वरूप इनका दिखाई देता है। आप अगर थोड़ा दिन भी ऐसा करेंगे, आप अनुभव करके देखेंगे, जो संकल्प आपने किया वो शेष संकल्प के अनुकूल वो चीज आपको दिखाई देगी। ये मैं अपना नहीं, अनेक आत्माओं के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सुना रही हूँ। मैं लंबा चौड़ा और नहीं सुनाना चाहती, इतना ही कहकर मैं ओम शांति कहूंगी। और मुझे कार्य मिला है कि मैं अपनी बहनों का स्वागत कर सकूं, ये भी मेरा परम सौभाग्य है। कि ऐसी महान विभूतियाँ आज की मंच पर बैठी हैं और आप सब उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे लेकिन अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन भी उनको दे रहे हैं और हल भी दे रहे हैं। इसलिए आप भी महान विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद है।